आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम केवल विश्वास करो का यह गीत सुनते हैं, इससे हम यह जान पाते हैं कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए केवल उन पर विश्वास करना है, क्योंकि ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जैसे कि हम पुकारते हैं, जैसे वो मनुष्य जिसका मिर्गी का बालक था, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय करें। हम आपकी महान सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका स्वयं का महान प्रकाशन इस अंतिम दिनों में हम पर खुलता है। इससे हमारे हृदय आनंद और हर्ष से परिपूर्ण हो जाते हैं, यह जानकर कि हम जीवित परमेश्वर के संपर्क में आ गए हैं, जो कि हमें सीधे वापस भौतिक वस्तुओं से प्रमाणित करता है, जैसे उसने बीते दिनों में किया और जैसे कि इन दिनों के लिए भी प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर, हम आपके बहुत ही धन्यवादित हैं। इन अंधकार के दिनों में जब ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि कहाँ जाएं, हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमें सुरक्षित स्थान आश्रय मिल गया है। अब प्रभु, आज रात जब हम आपके वचन को बोलते हैं, तो हमें आशीष देना और वे प्रतिज्ञाएं जो हमें दी गई हैं, होने पाए, हम उन्हें हमारे हृदय में पोषित करें। सम्मान के साथ हम इनका पालन करें और सच में भक्ति भाव के अनुशासन में उनको माने, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रेम भेंट, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसने किया है, आप दोषी हैं। मैं प्रबंधक पर नाराज हो रहा था, उसने कहा कि उसने मेरे लिए एक प्रेम भेंट ली है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसकी सराहना करता हूँ, परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे, जो भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, मैं इसको विदेशी मिशनरी काम के लिए दे दूंगा, सो मुझे पता चलेगा कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए जाएगा, और यदि परमेश्वर ने चाहा, तो मैं स्वयं इसे वहाँ उन देशों में ले जाऊँगा, ताकि ये सुसमाचार जो इस सप्ताह आप सुन रहे हैं उन तक भी पहुँचे, तब मैं समझता हूँ यह उसी तरह से होगा जिस तरह से आपने विश्वास किया है। परमेश्वर ऐसा करने में मेरी सहायता करे। मैं इस सप्ताह बहुत से लोगों की उपस्थिति के लिए आभारी हूँ, और आप सभी लोगों का भी जो आज रात भी अपने उन टेलीफोन की तारों के जरिए से जुड़े हुए हैं, और हम आप में से हर एक और सभी जन के लिए आभारी हैं। आज प्रातः बिल्ली ने मुझसे कहा, उसने कहा, डैडी, यदि आप आज सुबह मेरे साथ जल्दी आते तो ठीक दिन निकलने के बाद और उन आसपास की जगहों में खड़े होकर ध्यान देते कि किस तरह से माताएं अपने बच्चों को कार में दूध पिला रही थी, वे बेचारे लोग कैसे बारिश में बैठे हुए थे, आराधनालय के दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि मैं सत्य से हटकर आपको कुछ और बताऊं, तो मैं कितना ढोंगी होऊंगा, मैं वास्तव में एक बहुत बुरा व्यक्ति होऊंगा, कभी कभी मैं आपको ठेस पहुँचाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मैं नहीं हूँ जो ठेस पहुँचाता हूँ, यह तो सत्य है जिससे ठेस पहुँचती है, और मैं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि इसी कारण आप यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूँ और आपकी पूरी पूरी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभु आप में से हर एक जन की सहायता करे। और अब मैं लोगों को उनके अच्छे सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ इस शहर के लोगों का भी, जिनसे हमने यह स्कूल का हॉस्टल, यह सभागार और व्यायामशाला किराए पर लिया है, और यदि यहाँ के अधिकारी गण यहाँ पर हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं थर्स्टन कॉलविन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो यहाँ के संरक्षण हैं, जिनके अच्छे सहयोग और सहायता से यह हमें मिला है, और वो हर रात यहाँ उपस्थित रहे हैं। हम जयपर्सन विले के पुलिस बल को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कम पैसे में आकर हमारी देखभाल की है। मैं समझता हूँ लगभग $2 प्रति घंटा की पुलिस को यहाँ विशेष कार्य पर लगाया गया था कि कारों को पार्क करे, यह देखने के लिए कि वहाँ कोई कुछ भी घटित ना हो और हर एक चीज सही रहे, इसके लिए हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। और उन इंजीनियर को भी, जिनको मैंने यहाँ उस बोर्ड पर देखा था, और उसके अलावा उन सबको जो इससे जुड़े हुए हैं, हम सच में उनके बड़े आभारी हैं। इन उपहारों के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज दोपहर को बिली इन कुछ उपहारों को मेरे पास लाया, उसमें बहुत सारे और बॉक्स टॉफियां और इत्यादि हैं, और उनमें से एक में वो धन्य पहाड़ी वचन था। उसमें बहुत सुंदर मसीह की एक तस्वीर बनी हुई थी जो उस पहाड़ी उपदेश के साथ था, और वह वास्तव में सुंदर थी। मैं सच में आपको धन्यवाद देता हूँ, और बहुत सी चीजें हैं मुझे नहीं पता कि मैं कैसे धन्यवाद दूं। फिर आपके द्वारा इन सभाओं को प्रायोजित करने, आर्थिक सहायता देने के लिए भी हम सच में पूरे हृदय से आपकी सराहना करते हैं। प्रभु आप में से हर एक को बहुत सारी आशीष दे। बिली ने बताया कि बहुत से लोग इस समय के दौरान आपसे निजी इंटरव्यू लेने के लिए मांग कर रहे हैं, और बहुतों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को समर्पण करने के लिए पूछा था। ओह, मैं इसे चाहते हुए भी नहीं कर सका, लेकिन आप देखिए कि इस बार जब मैं आया हूँ तो मेरे लिए यह बहुत आवश्यक था। मुझे हर समय ठीक इसी में बने रहना था और प्रार्थना में इस वचन के अध्ययन में रहना था, ताकि आपके लिए संदेशों को ला सकूं। देखिए, ये ऐसे ही नहीं, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है और फिर उन बातों को बोलना है, और इन सब बातों को आपस में मेल खाना भी अवश्य था, और परमेश्वर से ये पूछना कि कौन सा वचन खोला जाए। अब परमेश्वर चाहेगा तो हम जल्द ही वापस आएंगे, जैसे ही हमें कोई एक दिन मिलेगा। मैंने एक प्रस्ताव को रखा, या ऐसे कहूं कि कुछ तो ईस्टर के विषय में अच्छा होगा कि मैं उसकी जांच कर लूं। मैं सोचता हूं कि उस समय की अनुसूची के अनुसार मुझे कैलिफोर्निया में होना है। हो सकता है गलत भी हो, जैसे भी हो, जब हम वापस आराधनालय में आएंगे तो हम आपके पास कार्ड को भेजेंगे और कलीसिया से, और आपको तारीख और समय बता देंगे। तब मैं भी, हो सकता है उस समय फिर से, मैंने बीमारों की प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं रखा है। हमने एक भी सभा ऐसी नहीं रखी कि हम लोगों को यहाँ लाकर और उनके लिए प्रार्थना करें। हम उन्हें बाहर भेजते रहे हैं, और हमारे भाई लोग यहाँ प्रचार कर रहे थे, भाई लीवेल और भाई ये दूसरे भाई लोग प्रचार कर रहे हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जल का बपतिस्मा दे रहे हैं। मेरा मतलब बपतिस्मा देते हुए और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ अकेले में रहने के लिए समय दे रहे थे। हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ बहुत से मित्र हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ, और जॉन और अर्ल भी हैं, और वहाँ डॉक्टर लीवेल भी हैं, जो कि इस अभियान के प्रबंधकर्ता में से एक हैं। भाई रॉय बॉर्डर्स हैं, वे लोग मेरे पास यहाँ तक नहीं, मैं यहाँ तक उनसे हाथ भी नहीं मिला पाया हूँ। मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला है। मैं अपने केंटकी के दोस्तों के लिए भी सोचता हूँ, और यहाँ आसपास के हैं, और जो सेवक मित्र हैं, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं उन लोगों से हाथ मिलाऊं। अभी उस दिन मैंने यहाँ भाई ब्लेयर को देखा था, और बहुत से लोगों को जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, और वे बहुत सी सभाओं में आए थे, और मैं ऐसा भी नहीं कर सका कि मैं उनसे हाथ मिला पाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास इसे करने का समय नहीं है, और मैं बस जल्दी में होता हूँ। निश्चय ही बालकों को समर्पण करना है। मेरा अपना बेटा, मेरा छोटा पोता, जिसका इसी सभा में ही समर्पण होना था, मेरे पास समय नहीं था कि छोटे डेविड का समर्पण करूँ। अब तो मैं दो बार दादा बन चुका हूँ, इसलिए तो श्रीमान मई, यदि आज रात वो यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे छड़ी दी है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही जल्द इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। इसलिए, और मैंने बिल्ली से कहा कि बाइबल कहता है फूलों फलों और पृथ्वी भर में भर जाओ, लेकिन यह सारा भार तुम्हें ही नहीं दिया गया था, और यह पोते जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। और सो याद रखिए कि मेरी पुत्र वधु शुरू से ही बांस थी, उसे बालक नहीं हो सकते थे, और एक दिन एक सभा के निकलते समय प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, लॉयस तुम बेटा जनोगी, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हारा स्त्री रोग समाप्त हो गया है, और 9 महीने के बाद छोटे पॉल का जन्म हुआ। इस बालक के दृश्य पर आने के 2 महीने पहले एक प्रातः मैं बैठकर नाश्ता कर रहा था वहाँ टेबल पर, और मेरे सामने उस ओर बिल्ली और लॉयस टेबल पर बैठे हुए थे, और मैंने देखा लॉयस एक छोटे बच्चे को जो गुलाबी या नीले कंबल में लपेटे हुए उसे दूध पिला रही है, और बिल्ली कोने पर बैठा हुआ छोटे से पॉल को खिला रहा था। मैंने कहा, बिल्ली मैंने अभी अभी एक दर्शन देखा है, लॉयस एक छोटे बच्चे को नीले कंबल में लपेटे हुए दूध पिला रही है। उसने कहा, अब से 9 महीने बाद मेरे शिकार की यात्रा है। 11 महीने बाद छोटा डेविड जन्मा था, और अब तक मैं उसे प्रभु को समर्पित नहीं कर पाया हूँ, और ना ही कर पाऊंगा जब तक मैं लौट कर फिर से वापस नहीं आता। तो आप देख रहे हैं ये सब क्या है। मैं लोगों को और उनकी संगति को कितना चाहता हूँ, लेकिन हमारे भाई बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि उन्हें सफलता मिल रही है। हर एक रात को हमने बीमारों के लिए प्रार्थना की है, एक दूसरे पर हाथ रखते हुए, सभी एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरे विषय को शामिल कर लेता है, लेकिन हो सकता है यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं इसे कार्ड पर चिन्हित कर दूंगा। यदि हम इसे भेज सकें और वापस आने के बाद 2 या 3 दिन फिर से समर्पित करना चाहता हूँ। मैं बस बीमारों के लिए प्रार्थना करूँगा और उस तरह से हम जो कर सकते हैं उसे करेंगे। अब और मैं फिर से लोगों को सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं बस कुछ समय के लिए कुछ टिप्पणी आज सुबह के संदेश के लिए करना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने इसे विस्तार से नहीं लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप समझते हैं, और मुझे पक्का है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरे लिए ये करना कितना कठिन था। अब ये आपको बहुत ही आसान सा लगता होगा, लेकिन आप देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप परमेश्वर के स्थान को ले रहे हैं ताकि कुछ तो घोषित करें, और इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, इसे परमेश्वर की ओर से उत्तर आना था और उसे नीचे उतर कर आना था और प्रकट रूप में अपने को दिखाया और प्रकाशन को दिया। इसलिए देखो, यह कलीसिया के लिए है, और याद रखिए, मैंने कहा यह जो मैंने कहा केवल कलीसिया के लिए था, और ताकि आपके पास पूरा भरोसा और समझ हो सके कि यह वही परमेश्वर है जिसने वहाँ मुझसे कहा था, जहाँ कोई भी गिलरी नहीं थी, कहा कि बोल और कह दे जहाँ पर वे होंगी, और लगातार 3 बार ऐसा हुआ। अब यदि वह उसी वचन के द्वारा कुछ सृष्टि कर सकता है जहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो फिर न्याय के दिन यह और कितना अधिक दृढ़ होगा। समझे, लोग इन चीजों को देखने के लिए वहाँ थे और जानते हैं, जैसा कि बीते दिनों में पौलुस ने कहा, उसके साथ वहाँ लोग थे जिन्होंने धरती को हिलते महसूस किया और आवाज को नहीं सुना, लेकिन उन्होंने उस आग के खंभे को देखा। हालांकि इसने मेरे लिए अच्छा किया, इसके समाप्त होने के बाद यह देखकर कि पति पत्नियाँ, जिन्हें मैं जानता हूँ कि वे सच्चे मसीही हैं, एक दूसरे को गले लगाकर और रो रहे हैं। और मित्रों सुनिए, परमेश्वर अपने वचन को चिन्हों और प्रमाणित करने के साथ पुष्टि करता है ताकि साबित करे कि यह सही है, बोला गया वचन। अब याद रखिए, वो प्रकाश जो उस बादल में था, उसने प्रकाशन को दिया। मेरी छोटी बेटी मुझे बता रही थी, सारा जो यहाँ है, कि जब वो स्कूल में जो एरिजोना में था, उस बादल रहित आकाश को देख रहे थे, और इस रहस्यमय बादल को देखते हुए जो उस पहाड़ पर था, एक आग के साथ ऊपर और नीचे आ जा रहा था, और शिक्षक ने कक्षाओं की छुट्टी करके उनको वहाँ सामने बुलाकर और कहा, क्या तुमने पहले कभी कोई ऐसी चीज देखी है? उस ओर देखो जो वहाँ पर है। याद रखना, यह वही अग्नि में प्रकाश था जो कि चट्टान पर था, इसलिए वो वही परमेश्वर है, वही प्रकाशन है। उसने कहा कि उनसे यह करने के लिए कहो, यही मैंने आज सुबह आपको बताया, सो वहाँ है ये। यदि ऐसा होता है कि यह मेरे प्रिय मित्र भाई रॉय रॉबर्सन टूसान में सुन रहे हो, रॉय, तुम्हें याद है कि उस दिन जब तुमने दर्शन देखा, जब हम वहाँ ऊपर पहाड़ पर खड़े हुए थे, तुम मेरे पास आए थे और वो बादल वहाँ सबसे ऊपर चोटी पर था, चलता हुआ नीचे आ रहा था। तुम जानते हो कि उसने तुम्हें क्या बताया, और उस दिन मैंने घर में तुम्हें बताया था। यही है वो रॉय। अब और चिंता मत करो पुत्र, यह खत्म हो चुका है, और तुम नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। यह अनुग्रह है, वह तुमसे प्रेम करता है, और तुम उसे प्रेम करो, नम्रता पूर्वक उसकी सेवा करो, और जीवन के बाकी दिनों में उसकी आराधना करो। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और जैसे हो वैसे ही जीते रहो। यदि तुम खुश हो तो इसी तरह से जारी रखो, इस तरह से कुछ भी फिर से गलत ना करना, बस आगे बढ़ते रहो, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अब मैं वचन में जाने से पहले फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप में से कितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं बस एक सभा से दूसरी सभा में जाता हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? आप जानते हैं, वचन पर जाने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक छोटा सा गीत गाएं, बस इसलिए कि हम जान जाएं परमेश्वर, बस थोड़ा सा समर्पण। क्या आपने कभी यह गीत सुना है, वो आपकी चिंता करता है? चमकते सूर्य में और दुख में वो आपकी चिंता करता है। वो नम्र महिला पियानो की ओर आ रही है। मैं इस छोटी महिला के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि वो महिला कौन थी, या यहाँ किसी डीकन की बेटियों में से एक है। मुझे निश्चय ही भाई व्हीलर की छोटी बेटी, अब वो बड़ी हो गई है। ज्यादा समय नहीं हुआ, यह छोटी सी लड़की मेरे घुटने पर बैठती थी, और अब यह नवयुवती हो गई है, इसलिए मैं अवश्य ही उसे धन्यवाद देता हूँ कि इसने अपने संगीत की प्रतिमा का प्रयोग किया है और अब वो बहुत ही मधुर संगीत बजाती है। बहन, क्या आप हमें स्वर को देंगी? अब हम सब एक साथ गाएंगे। आपको ये पसंद है? आइए हम सब फिर से इसे एक साथ गाएं। भाई डॉच, वह आपकी भी चिंता करता है भाई, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? अब आइए, अब हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस थोड़ी सी टिप्पणियों के साथ, ताकि लोगों से कुछ बातों को कहूं और फिर से आज सुबह इस संदर्भ में कहूं, क्योंकि यही है जिसे लोग सुनने आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग यह देख सकें कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनकी चिंता करता है। और प्रभु, यह मैं नहीं हूँ जो उन्हें यह देता हूँ, यह प्रमाणित हुआ था कि यह सत्य था। इसलिए प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रेम हमेशा ही लोगों के बीच में रहे। आज रात जब हम अलग अलग होकर और अपने अपने घरों में जाएंगे और यह हमें किसी गहराई में ले जाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को आशीष दें। अब जब हम प्रार्थना में वचन की ओर जा रहे हैं और लिखित वचन की ओर जा रहे हैं, हम मांगते हैं कि आप इन लिखित वचनों को लेकर और आज रात हमारे लिए जीवित बनाएं। और जब हम आज रात इस इमारत को छोड़कर अपने अलग अलग घरों में जाते हैं, होने पाए हम उन लोगों के समान कहें जो इमाउस से आए थे, जो उसके साथ सारे दिन चले थे और फिर भी उसे नहीं जान पाए। लेकिन जब वो उनके साथ उस रात को कमरे में गया और सारे द्वार बंद थे, तो उसने तब कुछ ऐसा किया जो उसने अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था। उस बात से उन्होंने जान लिया कि वह फिर से जी उठा है। प्रभु, आज रात भी फिर से करें, प्रभु से प्रदान करें, जबकि दरवाजे बंद हैं और आपका छोटा झुंड यहाँ बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। और पिता, जब हम अपने घरों को जाते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह कहें, जब वो रास्ते में हमसे बातें करता था, तो क्या हमारे हृदय में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप वही करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब आइए हम जल्दी से सीधे अब सभा में आगे जाएं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ निकालें इब्रानियों की किताब से और इस संदेश का एक और प्रकाशन। प्रभु ने चाहा तो इस पर आज रात थोड़ी देर के लिए बोलेंगे। और तब पहले इब्रानियों 7:1-3 के तीन पद को पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। और हम नहीं जानते कि प्रभु क्या करेगा, हम नहीं जानते, हमें केवल एक काम को करना है कि केवल विश्वास करें, जागते रहें, प्रार्थना करें, ये ठीक है? और विश्वास करते हैं कि वो हर एक चीज को कुल मिलाकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा जो उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की है। क्योंकि यह मलकीसेदिक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम का राजा, जो कि शांति का राजा है। आइए थोड़ा और आगे पढ़ें। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है या न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरा, सर्वदा याजक बना रहता है। इस महान व्यक्ति के विषय में सोचें कि इस पुरुष को अवश्य ही कितना महान होना चाहिए। और अब प्रश्न यह है कि यह व्यक्ति कौन है? धर्म ज्ञानियों के पास भिन्न भिन्न विचार थे, लेकिन जब से सात मोहरें खुली हैं, यह रहस्यपूर्ण किताब जो कि हमारे लिए रहस्यपूर्ण थी, प्रकाशित वाक्य 10:1-7 के अनुसार जितने भी रहस्य इस किताब में लिखे हैं और सुधार के युगों में से होते हुए इसमें छिपे हुए हैं, यह सब अंतिम कलीसियाई युग के दूत के द्वारा प्रकाश में आना चाहिए था। आप में से कितने जानते हैं कि यह सत्य है, यह सही है, इसे लाया जाना चाहिए। यह रहस्यपूर्ण किताब के सारे रहस्य लौदीकिया युग के संदेशवाहक के लिए प्रकट किए जाने चाहिए। देखते हुए कि इस व्यक्ति और इस विषय में बहुत विवाद है, और इस विषय में मैं सोचता हूँ कि हमें इसमें गहराई से जाना चाहिए कि पता लगाएं कि यह कौन है। अब बहुत से विद्यालयों के इस पर अपने अपने विचार हैं। एक विद्यालय इस बात का दावा करता है यह केवल एक काल्पनिक है, यह असल में कोई व्यक्ति नहीं था, और दूसरे कहते हैं कि यह एक याजक पद है जो कि मलकीसिदिक याजक पद है, क्योंकि काफी हद तक यह विचार दूसरे विचार की तुलना में अधिक उपयुक्त और ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि वे कहते हैं यह याजक गण था। यह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे पद में ये कहता है कि वो एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। वो एक व्यक्ति होने के कारण एक व्यक्तित्व होना चाहिए, एक मनुष्य, ना ही एक व्यवस्था, लेकिन एक व्यक्ति। इसलिए वो केवल एक याजक गण व्यवस्था नहीं था, ना ही वह कोई काल्पनिक था, वो एक व्यक्ति था। और यह व्यक्ति अनंत है। यदि आप ध्यान दें, उसका ना कोई पिता है, उसकी ना ही कोई माँ थी, इसके आरंभ का कोई समय नहीं था, और ना ही कभी इसके अंत का समय है। और यह जो भी है आज रात भी जीवित है, क्योंकि बाइबल यहाँ कहता है कि इसका ना कोई पिता था, ना तो माँ थी, ना ही इसके दिनों का आरंभ है, ना ही जीवन का अंत है। इसलिए यह एक अनंत व्यक्ति है। क्या यह सही है? एक अनंत व्यक्ति, इसलिए यह केवल एक व्यक्ति ही हो सकता है जो कि परमेश्वर है, क्योंकि केवल वही वो एक है जो कि अनंत है, परमेश्वर। अब पहला तीमुथियुस 6:15-16 में यदि कभी आप उसे पढ़ना चाहें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अब वो बात जिस पर मैं तर्क करना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर था, क्योंकि वही वो एक व्यक्ति है जो अमरहार हो सकता है। और अब परमेश्वर अपने आप को व्यक्ति में बदल रहा है। यही है ये जो वो था, ना पिता है, ना माँ, ना जीवन का आरंभ है, ना ही दिनों का अंत है। अब हम वचन में पाते हैं कि बहुत से लोग यह सिखाते हैं कि तीन व्यक्तित्व एक परमेश्वरत्व में है। इसलिए बिना व्यक्ति के आपके पास व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति हो। कुछ सप्ताह पहले एक बैप्टिस्ट सेवक आया मेरे घर आकर और कहने लगा, मैं आपसे परमेश्वरत्व के विषय में, जब आपके पास समय होगा तो मैं आपसे कुछ बातों को साफ करना चाहूँगा। मतलब उसने मुझे फोन किया था। मैंने कहा मेरे पास अभी समय है, क्योंकि मैं साफ करना चाहता हूँ, और ऐसा करने के लिए हम सब चीजों को एक और रखेंगे। और वो ऊपर आकर कहने लगे, भाई ब्रहणम, आप लोगों को सिखाते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा तो ठीक है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि एक परमेश्वर है, लेकिन एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में है। मैंने कहा श्रीमान इसे फिर से कहिए। उसने कहा एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में। मैंने कहा आप कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, समझे? और उसने मुझे एक बाइबल कॉलेज का नाम बताया। मैंने कहा मैं इसका विश्वास कर सकता हूँ। आप बिना व्यक्तित्व के एक व्यक्ति नहीं हो सकते, और यदि आप व्यक्तित्व हैं तो आप अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, आप एक अलग व्यक्तिगत अस्तित्व हैं। और उसने कहा कि ठीक है, धर्म ज्ञानी भी इसकी व्याख्या नहीं कर सके। मैंने कहा यह प्रकाशन के द्वारा है, और उसने कहा मैं प्रकाशन को स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा तो फिर परमेश्वर के पास कोई और रास्ता नहीं है कि आपको इसे समझा सके, क्योंकि यह तो ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपाकर और बालकों पर प्रकट किया गया है। प्रकट किया गया प्रकाशन बालकों पर प्रकट किया गया, ऐसे जो इसे स्वीकार करेंगे, सीखना चाहेंगे। और मैंने कहा परमेश्वर के पास कोई और रास्ता न होगा कि आप तक पहुंचा सके, आपने अपने को उससे अलग कर लिया है। संपूर्ण बाइबल ही परमेश्वर का प्रकाशन है, संपूर्ण कलीसिया ही परमेश्वर के प्रकाशन पर बनी है। प्रकाशन को छोड़ परमेश्वर को जानने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर भी पुत्र उसे प्रकट करेगा। प्रकाशन, हर एक चीज प्रकाशन है, इसलिए प्रकाशन को स्वीकार न करके तब आप केवल एक ठंडे धर्म ज्ञानी हैं और आपके लिए कोई आशा नहीं है। अब हम पाते हैं कि इस व्यक्ति के पास ना पिता है ना माता है, इसके दिनों का ना आरंभ है या जीवन का अंत है, यह परमेश्वर था, एन मॉर्फे। अब यह शब्द यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ है बदलना, इसके लिए प्रयोग किया है खुद को बदलते हुए, एन मॉर्फे, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति में। यूनानी शब्द एन मॉर्फे इसका अर्थ होता है। इस शब्द को मंच पर अभिनय करने से लिया गया है कि एक व्यक्ति अपने मुखौटे को बदलता है कि उसे कोई दूसरा चरित्र बना दे। जैसे स्कूल में, अभी हाल ही में मैं सोचता हूँ रिबिका, डिग्री प्राप्त करने से ठीक पहले उनके यहाँ शेक्सपियर का नाटक हुआ था, और एक युवक को बहुत बार अपनी वेशभूषा बदलनी थी क्योंकि उसे दो या तीन भिन्न भिन्न चरित्र प्रस्तुत करने थे, लेकिन व्यक्ति वही था। एक बार जब वो सामने आया तो वो खलनायक था, और जब दूसरी बार आया तब वो एक दूसरा चरित्र था। और अब इस यूनानी शब्द एन मॉर्फे का अर्थ है कि उसने अपना मुखौटा बदला, और यही है जो परमेश्वर ने किया हर बार। यह वही परमेश्वर है, परमेश्वर पिता के रूप में है, वो आत्मा, आग का खंबा, वही परमेश्वर शरीर में आया और हमारे बीच में रहा, एन मॉर्फे, वह सामने आया ताकि उसे देखा जा सके। और अब वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, पिता, पुत्र, पवित्र, तीन परमेश्वर नहीं, तीन कार्य स्थल, एक ही परमेश्वर के तीन कार्य। बाइबल कहती है केवल एक परमेश्वर है, तीन नहीं, लेकिन इसी तरह से कि वे नहीं कर सके, आप तीन परमेश्वर लेकर और कुछ भी साफ नहीं कर सकते। आप किसी यहूदी को यह कभी नहीं बता पाएंगे, मैं ये आपको बताता हूँ, वो एक जो अच्छी तरह से जानता है कि केवल एक ही परमेश्वर है। ध्यान दें, जैसे कि एक मूरत वो उसे ढांकता है इसके ऊपर एक मुखौटे के साथ, ऐसा ही है जो परमेश्वर ने इस युग में किया है, इसे छिपाया गया है, इन सारी बातों को छिपा दिया गया है और इस युग में प्रकट होना है। अब बाइबल कहती है ये सब अंतिम समय में प्रकट होगा। यह एक मूर्तिकार की तरह है जो अपनी मूर्ति को ढाके हुए रखता है, जब तक समय नहीं आता उसके ऊपर का मुखौटा नहीं हटाता है, और ये वहाँ है। और बाइबल भी इसी प्रकार से है, यह परमेश्वर का वो कार्य है जो ढका हुआ है और जगत की बुनियाद से लेकर छिपा हुआ है, और यह सात गुना छिपा हुआ रहस्य है। और परमेश्वर ने इस दिन में लौदिकिया कलीसिया युग के लिए प्रतिज्ञा की है कि वो इस सब के ऊपर से मुखौटे को हटा देगा और हम इसे देख सकेंगे। क्या ही महिमा में बात है। परमेश्वर एन मॉर्फे हुआ, आग के खंभे में मुखौटा किया, परमेश्वर एन मॉर्फे एक मनुष्य में जो यीशु कहलाता है, परमेश्वर एन मॉर्फे अपनी कलीसिया में, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। यह परमेश्वर का नीचे स्तर में आना है, वहाँ ऊपर उस पवित्र को कोई भी उसे नहीं छू सकता था जब वो पहाड़ पर उतरा, और यहाँ तक यदि पशु भी पहाड़ को छू ले तो उसे मरना था। और तब परमेश्वर नीचे उतर आया और अपने तंबू को बदला और नीचे आया और हमारे संग रहा, हम में से एक बन गया। बाइबल कहती है हमने उसे छुआ, पहला तीमुथियुस 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद महान है, अर्थात वो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ था जिसे हाथों से छुआ गया। परमेश्वर ने खाना खाया, परमेश्वर ने पानी पिया, परमेश्वर सोया, परमेश्वर रोया, वह हम में से एक था। बाइबल में सुंदर नमूना है, वह परमेश्वर हमारे ऊपर था, परमेश्वर हमारे साथ था, अब परमेश्वर हम में है, पवित्र आत्मा, ना ही तीसरा व्यक्ति, वही एक व्यक्ति। परमेश्वर नीचे उतर आया और शरीर बन गया और मसीह में मृत्यु से मरा, जिससे कि कलीसिया को धोकर संगति को करने के लिए इसके अंदर आ सके। परमेश्वर संगति को पसंद करता है, इसलिए उसने संगति के लिए पहली बार मनुष्य को बनाया। परमेश्वर अकेला रहा उन करूबों के साथ, और अब ध्यान दें, उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य गिर गया, इसलिए वो मनुष्य को छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया, क्योंकि परमेश्वर आराधना करने को पसंद करता है। परमेश्वर शब्द का अर्थ है आराधना की वस्तु, और यह हमारे बीच में आता है एक आग के खंभे के रूप में, कुछ ऐसा जो हमारे हृदयों को बदल देता है। यह वही परमेश्वर था जिसने कहा वहाँ उजाला होने दो, और उजाला हो गया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब आदि में परमेश्वर अपने गुणों के साथ अकेला रहा, जैसा कि आज सुबह को मैंने इस पर बोला था, यही उसके विचार थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अकेला परमेश्वर था, लेकिन उसके पास विचार थे, जैसे कि कोई महान वास्तुकार निर्माता बैठकर जो अपने मन में सोच सकता है, इसे चित्रित करता है, वो उस वस्तु को बनाएगा। सृष्टि, अब वो सृष्टि नहीं कर सकता, वह कुछ तो सृष्टि की हुई चीजों को लेकर और उसे एक विभिन्न आकार में बनाता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही एक है, वो केवल एक ही सृष्टि करता है, लेकिन अपने मन में उस चीज को लाता है जो वो करने जा रहा है, और वही उसके विचार होते हैं, यही उसकी इच्छा है, और यह उसका एक विचार होता है, और तब वो इसे बोलता है, और तब ये एक शब्द होते हैं, और एक शब्द एक विचार होता है, जब इसे व्यक्त किया जाता है, ये एक शब्द है, एक विचार जो व्यक्त किया जाता है, ये शब्द होता है, लेकिन पहले इसे एक विचार होना है, इसलिए यह परमेश्वर का गुण है, तब यह एक विचार बनता है, उसके बाद एक शब्द। ध्यान दें, आज रात जिनके पास अनंत जीवन है, वो उसके साथ थे और उसके अंदर थे, उसके विचारों में, इससे पहले कि कभी एक दूत, तारा, करूब हो या कोई भी वस्तु होती, यही अनंतता है। और यदि आप में अनंत जीवन है, तो आप हमेशा से थे, ना ही आपका अस्तित्व जो यहाँ है, लेकिन रूप और आकार जो अनंत परमेश्वर, और यदि वो अनंत नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को तो अनंत ही होना है, हमारी सीमा है, वो असीमित है, और वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। यदि वो ऐसा नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वो सब बातों को जानता है, सारे स्थान को जानता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। सर्वज्ञानी ही उसको सर्वव्यापी बनाता है। वो एक अस्तित्व है, वो वायु की तरह नहीं है, उसका एक अस्तित्व है, वो एक घर में वास करता है, लेकिन सर्वज्ञानी होने पर सारी चीजों को जानता है, जो उसे सर्वव्यापी बनाता है, क्योंकि जो भी चल रहा है वो हर एक चीज को जानता है। एक पिस्सू भी अपनी पलके नहीं झपका सकता, लेकिन वो इसे जानता था, और इससे पहले संसार होता उसे पता था कि वह कितनी बार पलक झपकेगा और उसमें कितनी चर्बी होगी। इससे पहले कि कभी वहाँ संसार होता, यह असीमित है, हम इसे अपने मनों में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यह परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है। और याद रखिए, आपकी आंखें, आपका डील डॉल, जो कुछ भी आप थे, आप उसके विचारों में आरंभ से ही थे, और केवल एक चीज की आप उसका व्यक्त होना है, शब्द, इसे सोचने के बाद वह इसे बोला, और यहाँ पर आप आते हैं। यदि ये ऐसा नहीं है, यदि आप उसके विचारों में नहीं थे, तो आपके वहाँ पर होने का बिल्कुल कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि केवल वही एक है जो अनंत जीवन को देता है। आपको याद है हम वचन को कैसे पढ़ते हैं, वो नहीं जो चाहता है या दौड़ता है, केवल परमेश्वर, और ताकि उसका पहले से ठहराया जाना सत्य ठहरे। वह किसी भी समय से पहले चुन सकता है। कौन? परमेश्वर चुनाव में उसके सर्वोच्च अधिकार को रखता है। क्या आप ये जानते हैं? परमेश्वर सर्वोच्च अधिकार को रखता है। वहाँ पीछे ऐसा कौन था जो उसको संसार कैसा बनाया जाए इसके लिए परामर्श देता? किसकी हिम्मत होगी कि उसे बताए कि वो उसके काम को गलत कर रहा है? यहाँ तक कि वही वचन अपने आप में उसी सर्वोच्च अधिकार को रखता है। यहाँ तक कि उसका प्रकाशन भी सर्वोच्च अधिकार को रखता है। वह जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करता है। उसका वही प्रकाशन अपने आप में परमेश्वर में सर्वोच्च अधिकार को रखता है। इसी तरह लोग चीजों पर टूट पड़ते हैं, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करते हैं और चीजों पर बरस पड़ते हैं। वे जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उसके कामों में सर्वोच्च अधिकार को रखता है। अब हम आदि में उसे उसके गुणों को पाते हैं और अब आप तब उसी के साथ थे, तभी जीवन की किताब दृश्य में आती है। अब हम यहाँ प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं कि पशु जब धरती पर आता है, इन अंतिम दिनों में वह उन सब लोगों को धरती पर भरमाएगा जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में संसार के बुनियाद डालने से पहले नहीं लिखे गए। इस विषय में सोचिए, इससे पहले यीशु का जन्म होता, 4000 वर्ष इससे पहले वह धरती पर आता और कई हजारों वर्ष इससे पहले आप धरती पर आते। यीशु परमेश्वर के मन में संसार के पापों के लिए मरा और जीवन की पुस्तक बनी थी और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में संसार की बुनियाद डालने से पहले डाला गया। यही बाइबल का सत्य है। देखो, आपका नाम परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया और जीवन की पुस्तक में संसार की बुनियाद डालने से पहले रखा गया। आप वहाँ उसके गुणों में थे, यह आपको याद नहीं है? जी नहीं, क्योंकि आप बस उसके जीवन का एक भाग थे। आप परमेश्वर के एक भाग थे जब आप परमेश्वर के बेटे या बेटियां बने। वैसे ही जैसे आप अपने धरती पर पिता का भाग थे, यह सही है। आप पुरुष हीमोग्लोबिन को लहू को लिए हुए होता है और जब यह अंडे में चला जाता है तो आप अपने पिता का एक भाग बन जाते हैं और आपकी माँ भी आपके पिता का एक भाग होती है। इसलिए आप सब अपने पिता का एक भाग हैं। महिमा हो, यह कुल मिलाकर संप्रदाय को पूरी तरह से बाहर कर देता है। और निश्चय ही ये करता है परमेश्वर सभी में एकमात्र स्थान। अब उसके गुणों पर ध्यान दें, तब ये गुण पहले परमेश्वर थे, उसके विचार सब गुण उस एक ही में थे बिना व्यक्त किए हुए। और जब उसने व्यक्त किया द्वितीय रूप में, तब वह वचन बन गया और तब वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। संत यूहन्ना का 1वां अध्याय और 1वां पद ध्यान दे, यह है आदि में, लेकिन इससे पहले अनंतता है। ध्यान दे, आदि में वचन था। जब समय आरंभ हुआ तो ये वचन था, लेकिन इससे पहले ये वचन हो, यह एक गुण था, एक विचार, तब इसे व्यक्त किया गया था। आदि में इसका व्यक्त होना जो वचन था। अब हम उसे ले रहे हैं जहाँ मलकीसेदिक है। यही यह रसपूर्ण व्यक्ति है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और तब वचन देहधारी बन गया और हमारे बीच में रहा। अब इस बात को वहाँ पकड़े रहना, ध्यान दें। उसका पहला अस्तित्व आत्मा था, परमेश्वर अलौकिक, तो ठीक है, वो महान अनंत। दूसरा, जब वो अपने आप को शरीर में बनाना आरंभ करता है, एक दैविक शरीर में, ये वो वचन एक शरीर कहा गया। यह तब वो अवस्था में था जब वो अब्राहम से मिला, जिसे मलकीसेदिक कहा गया। वो दैविक शरीर के रूप में था। अब हम इसे ले लेंगे और कुछ मिनटों में साबित करेंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो। वो वचन था, एक दैविक शरीर। कुछ तो ऐसी चीज है जिसे आप नहीं देख सकेंगे। ये अभी यहाँ भी उपस्थित हो सकती है, तब भी आप उसे नहीं देख सकते हैं। यह बस कुछ टेलीविजन की तरह है। यह दूसरे अय्याम में है, टेलीविजन। लोग अब ठीक इस कमरे में से होकर अब यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, गीतों का गाना, यहाँ रंग भी है, लेकिन आँख तो शरीर की 5 चेतनाओं में है। मेरा मतलब, आपका सारा अस्तित्व केवल आपकी 5 चेतनाओं के अधीन है और आप केवल उसी के अधीन होते हैं जिसे देखने के लिए आपकी दृष्टि को सीमित किया गया है। लेकिन वहाँ एक और दूसरा आयाम है जिसे बदलकर या परिवर्तन के द्वारा टेलीविजन के जरिए से देखा जा सकता है। अब टेलीविजन एक तस्वीर का निर्माण नहीं करता है, एक टेलीविजन तो उसे प्रकट करने की प्रणाली है और टेलीविजन का पर्दा उसे पकड़ लेता है, लेकिन तस्वीर आरंभ से ही वहाँ पर है। जब आदम यहाँ था तो टेलीविजन यहाँ था, जब एलिया कार्मेल पर्वत पर बैठा था तो टेलीविजन यहाँ पर था, जब यीशु नासरी गलील के झील के किनारे चला था तो टेलीविजन यहाँ पर था, लेकिन आपने इसकी खोज अभी की है। उन्होंने पहले वहाँ इसका विश्वास नहीं किया होगा। यदि आपने ऐसा कुछ कहा होता तो आप पागल होते, लेकिन अब यह हकीकत बन गया है। और इसी प्रकार मसीह भी यहाँ पर है, परमेश्वर के दूत भी यहाँ पर हैं, और किसी दिन आने वाली महान सहशताब्दी में यह टेलीविजन से या किसी भी और चीज से अधिक वास्तविक होगा, क्योंकि वे अभी यहाँ हैं। वो अपने आप को महान रूप में प्रकट करता है जो उसने दावा किया था, जैसा कि वो उसके सेवकों के अंदर एन मॉर्फी होता है और खुद को साबित करता है। अब वो यहाँ पर आत्मा के रूप में है और तब वो एक एन मॉर्फी के रूप में आता है। अब वो अब्राहम के लिए एन मॉर्फी में प्रकट हुआ। जब अब्राहम राजाओं को घात करके लौट रहा था तब यहाँ मेलकिसेदेक आता है और उससे बात की। एक दिन मैं टूसान के अखबार में मैं एक लेख को पढ़ रहा था कि जहाँ पर एक महिला सड़क पर कार चलाकर जा रही थी, मैं सोचता हूँ लगभग 40-50 मील की रफ्तार से जा रही थी, और उसने एक बूढ़े व्यक्ति को जो बड़ा कोट पहने था उसे टक्कर मारी। वो चिल्लाई और उसने कार रोक दी। इसने उस व्यक्ति को हवा में उछाल दिया सीधे वहाँ रेत के मैदान में, और वह उसे देखने को पीछे की ओर भागी तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं था। तो उस महिला ने क्या किया? कुछ लोगों ने जो उसके पीछे थे इसे होते हुए देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति ने जो लंबा सा कोट पहने हुए था उसे हवा में उछाल दिया, इसलिए वे भी उसे देखने को पीछे पलटकर भागे, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को बुलाया और उन्होंने भी उस स्थान की जांच की और किसी को नहीं पाया। तो हर एक व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी कि वो कार तेज आवाज के साथ उस मनुष्य से टकराई और वह ऊपर हवा में उछला, और सभी ने इसे देखा। और दो या तीन कार सवारों ने इस बात की गवाही दी, उन्होंने ऐसा होते हुए देखा। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि 5 वर्ष पहले एक बूढ़ा जो लंबा सा कोट पहने हुए था उसी स्थान पर टकराकर मारा गया था। जब आप यहाँ संसार से छोड़कर जाते हैं तो मरे नहीं हैं। आप यदि पापी भी हैं तो एक बार वापस आना होगा और आपके कामों के अनुसार जो आपने इस शरीर में किए हैं न्याय किया जाए। यदि यह धरती पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमारे लिए एक प्रतीक्षा कर रहा है। एन मॉर्फे यही वो शब्द है। अब परमेश्वर इस चरण से यह उसकी सृष्टि का यह चरण है जो बाद में देह में बना यीशु, किससे? अपनी उस महान आदि से आत्मा, फिर नीचे आकर वो वचन बना, अपने आप को बाहर लाता है। वचन ने अभी तक अपने आप को नहीं बनाया, इसे तो केवल बोला गया एन मॉर्फे। बाद में वो शरीर बनता है यीशु, हम सब पापियों के लिए मृत्यु को चखने के लिए मरणहार बना। जब अब्राहम उससे मिला वो मेलकिसेदेक था। वो यहाँ प्रकट करता है कि वे सारे गुण उस अंतिम अंत में क्या करेंगे। अब्राहम का हर एक पुत्र, विश्वास के सारे पुत्र भी पूरी तरह से उसी चीज को करेंगे, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमें कैसे आना है। हम उसको यहाँ रूत में और बोआज में भी प्रकट होते देखते हैं, एक छुड़ाने वाले निकट कुटुम्बी के रूप में किस प्रकार से उसे शरीर में आना था। अब हम उसके आत्मा के गुणी पुत्रों को देखते हैं। अभी तक वचन रूपी शरीर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन एक दैविक शरीर, यह शरीर वचन के अधीन है और बयाने के और शरीर के बदलने के उस बयाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उसके और आपके बीच अंतर है, एक पुत्र के रूप में देखो, वो आदि में वचन था, एक एन मॉर्फे शरीर, वो आकर और उसमें रहा, उस मेलकिसेदेक के व्यक्ति में। तब बाद में हमने फिर कभी अब और मेलकिसेदेक के बारे में नहीं सुना, क्योंकि वो यीशु मसीह बन गया। मेलकिसेदेक याजक था, लेकिन वह यीशु मसीह बन गया। अब आप उसे छोड़ते हुए आए, क्योंकि उस रूप में वह सब कुछ जानता है और आप इसे अभी तक कभी नहीं जान पाए हैं। आप आदम की तरह आए, मेरी तरह आप गुण से सीधे शरीर बन गए कि परखे जाएं। लेकिन जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा, यदि यह धरती पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा, तो हमारे लिए एक और है जो प्रतीक्षा कर रहा है। यही है जहां हम जाते हैं, यही वचन है। तब हम पीछे मुड़कर और देख सकते हैं और देखते हैं कि हमने क्या किया है। अभी हम इसे नहीं समझते हैं। हम कभी भी वचन नहीं बने हैं, हम शारीरिक मनुष्य बने हैं, ना कि वचन। लेकिन और अब आप साफ देख सकते हैं और ये बात साफ हो गई कि यदि आप आदि में विचारों में नहीं थे तो आप कभी वचन नहीं बन सकते। यह परमेश्वर की ओर से पहले से ठहराए जाने को साबित करता है। समझे, आप वचन बन ही नहीं सकते जब तक आप एक विचार ना हो। आपको पहले विचारों में होना था, लेकिन आप देखना कि आपको परीक्षाओं में खड़े रहने के लिए दैविक शरीर को छोड़कर आना था, सीधे यहाँ शरीर में पाप के द्वारा परखे जाने के लिए आना था। और तब यदि आप खड़े होते हैं, वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएंगे और मैं उसे अंतिम दिन में जिलाकर खड़ा करूंगा। देखिए, आपको पहले होना ही था, और तब आप देखते हैं कि वह सीधे नीचे आ गया, नियमित पंक्ति से, उस गुण से, जगत की बुनियाद डालने से पहले उसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में डाला गया है। तब उसमें से वो वचन बन गया, दैविक शरीर जो कि प्रकट हो सकता था और गायब भी हो सकता था, और फिर वह देह बन गया और फिर से वापस आ गया, उसी शरीर को एक महिमावंत अवस्था में फिर से पुनरुत्थित किया। लेकिन आप उस दैविक शरीर अवस्था को छोड़ते हुए शारीरिक मनुष्य बन गए ताकि पाप के द्वारा परखे जाएं। और फिर यदि यह धरती का डेरा सरीका घर गिराया जाता है, तो हमारे पास पहले ही एक प्रतीक्षा में है। अभी तक हमारे पास शरीर नहीं है, लेकिन देखो, जब यह शरीर परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करता है, तो अविनाशी जीवन आपके अंदर होता है, जो इस शरीर को परमेश्वर की अधीनता में डाल देता है। हालेलुया! वह जो परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता। रोमियो 8:1, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो आप हैं। देखिए, वो आपके शरीर को अधीनता में ले लेता है। और तब आपको यह नहीं कहना होगा, ओह, यदि मैं पीना छोड़ दूं तो, यदि मैं बस ऐसा कर सकूं तो, केवल मसीह में आ जाएं और सब अपने आप छूट जाएगा। समझे, समझे, क्योंकि आपका शरीर आत्मा के अधीन है और अब वो सांसारिक चीजों के अधीन नहीं है। वे सब मर चुके हैं, वे मर चुके हैं, और आपके पाप बपतिस्मे में गाड़े गए हैं, और आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, और आपका शरीर आत्मा के अधीनता में होता है और सही प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करता है। जैसे बहुत सी स्त्रियां इस बात का दावा करती हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा है, और यहाँ से बाहर जाकर और वो छोटे छोटे कपड़े और इत्यादि पहनती हैं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? कैसे परमेश्वर का आत्मा आप में हो सकता है? आपको इस प्रकार के काम भला कैसे करने दे सकता है? यह बस ऐसा नहीं हो सकता, निश्चय ही यह नहीं हो सकता। वो एक गंदा आत्मा नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है। और फिर जब आप उस आत्मा के अधीन हो जाते हैं, तो वो आपके पूरे अस्तित्व को उस आत्मा के अधीनता में डाल देता है, और वो आत्मा इस संसार में कुछ नहीं बल्कि वचन बीज है, जो प्रकट बना या जिलाया गया है, जीवंत बनाया गया है। हालेलुया! और जब बाइबल कहती है ऐसा मत करो, तो ये शरीर तुरंत इससे मुड़ जाता है, कोई सवाल ही नहीं है। और ये क्या है? यह पुनरुत्थान का बयाना है। यह देह फिर से जी उठेगी, क्योंकि यह पहले ही आरंभ हो चुकी है। ये किसी समय पाप के और दलदल और सराहट के अधीन था, लेकिन अब इसे बयाना मिल गया है, यह स्वर्गीय में बदल गया है। अब यही वो बयाना है जो आपको रैप्चर में ले जा रहा है। यही बयाना है, एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, मर रहा है, मृत्यु को छोड़ और कुछ नहीं बचा है। कुल मिलाकर यही हो सकता है। मैंने लोगों की छाया को कैंसर और टीबी से खाया हुआ देखा है, और फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को देखा है, बिल्कुल सामान्य और तंदुरुस्त। यदि दिव्य चंगाई नहीं है, तो वहाँ कोई पुनरुत्थान भी नहीं है, क्योंकि दिव्य चंगाई पुनरुत्थान का बयाना है। आमीन। आप जानते हैं कि पैसे का बयाना क्या होता है? क्या आप नहीं जानते यह अग्रिम भुगतान होता है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ध्यान दें, कितना अद्भुत है, हम उससे प्रेम करते हैं।
Now this body is subject to the spirit. Have not yet entered into
अब यह शरीर आत्मा के अधीन है, अभी तक वचन के रूप में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हम अभी तक शारीरिक रूप में हैं, लेकिन वचन के अधीन है। शरीर की मृत्यु हमें वहाँ ले जाएगी। ठीक वही चीज एक छोटे बच्चे के विषय में सोचें। आप एक स्त्री को ले सकते हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों न हो, जब वो गर्भवती होती है और माँ बनने वाली होती है, तो बालक के उत्पन्न होने से पहले आप उसको ध्यान से देखें। मैं परवाह नहीं करता कि वो कितनी निर्दयी क्यों न हो, वह सही में नम्र हो जाती है। वहाँ उस स्त्री के विषय में कुछ तो है, ऐसा प्रतीत होता है। वो धर्मी सी प्रतीत होती है। एक छोटी सी माँ को उस बच्चे के द्वारा माँ बनने के लिए तैयार होते हुए देखना, ऐसा क्यों है? वह छोटा शरीर अब जो कि अभी तक जीवित नहीं है, देखो वो अभी तक केवल मांस और मांसपेशियां है, जो जरा सा उछलना और बस मांसपेशियों का फड़कना है। लेकिन जब वह गर्भ से बाहर आता है, तो परमेश्वर जीवन की सांस को उसमें फूंक देता है और तब वो चिल्ला उठता है। देखिए, बस जैसे कि स्वाभाविक शरीर बनता जाता है, वैसे ही आत्मिक देह भी है, ताकि इसे ग्रहण करे। जैसे ही ये यहाँ पर होता है, तब जब एक मनुष्य स्वर्ग से फिर से जन्म प्राप्त करता है, तो वह मसीह में एक आत्मिक बालक बन जाता है। और फिर जब यह मांस रूपी वस्त्र उतर जाता है, वहाँ एक स्वाभाविक देह है, दैविक शरीर एक देह है, जो हाथों से नहीं बना है, ना ही स्त्री से जन्मा हुआ, जिसमें हम जाते हैं। तब वो देह वापस आकर और महिमावंत देह को ले लेती है। यही कारण है यीशु मरने के बाद अधोलोक में गया और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे, दैविक शरीर में वापस आ गया। ओह अद्भुत है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:1, यदि यह धरती का शरीर गिराया जाएगा, यह धरती का डेरा तरीका घर, तो हमारे पास एक और है। देखिए, जब परमेश्वर से सीधे निकले, उसे छोड़ते हुए आए, वो गुण शरीर बनने के लिए, जिसे परीक्षाओं में से जाना है, पाप से परखा जाना है, जैसा आदम परखा गया। लेकिन जब वचन की परीक्षा पूरी होती है, तब हमें इस देह में ले जाया जाता है, जो हमारे लिए जगत की बुनियाद डालने से पहले तैयार की गई थी। यह वो वचन ही था जिसको एक ओर छोड़ते हुए सीधे यहाँ नीचे आ गए कि परीक्षा की जाए और परखे जाएं। यदि हम उसमें से होकर आते, तो कोई परीक्षा न होती, हमें सारी चीजें पता होती। यही कारण था कि यीशु सब कुछ जानता था, क्योंकि इसके पहले वो शरीर में आता, वो वचन था। लेकिन हम वचन बनते हैं। यहाँ हम वचन के स्वरूप में बनते हैं, ताकि वचन के भागीदार बने, वचन पर भोजन करें। आदि से लेकर पहले से ठहराए जाने के द्वारा आप जीवन की उस छोटी सी चिंगारी को देखते हैं, जो कि आपके अंदर आरंभ से ही थी। जब से आपने ये जीवन यात्रा शुरू की, आप में से बहुत से लोगों को यह याद होगा, आप इस कलीसिया से जुड़ गए और उस कलीसिया से जुड़ गए, आप इसे और उसे करने की कोशिश करते थे, कोई भी संतुष्टि नहीं। यह सही है, लेकिन एक दिन आपने तब इसे पहचान लिया। सही है, एक रात जब मैं कहीं तो लोगों को सिखा रहा था, मैं समझता हूँ कैलिफोर्निया में या एरिजोना में, लगभग मैं सोचता हूँ कि मैंने उस छोटी सी कहानी को बताया था, जिसे एक व्यक्ति ने उकाब का अंडा एक मुर्गी के नीचे रख दिया था, और जब वह उकाब का बच्चा बाहर आया, जो कि एक अजीब सा पक्षी था, जिसे उन मुर्गी के बच्चों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन वह भी इधर उधर घूमता था, वह उनके बीच में बद्दा सा दिखाई देता था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे यह मुर्गी आवाज निकालती है और कूड़े को पंजे से खुरच कर खाती है। वो इस बात को नहीं समझ सका। मुर्गी कहती होगी, प्रिय यहाँ आओ और भोजन करो, लेकिन वह तो एक उकाब था, उसने बस इस तरह से नहीं खाया, ये उसका भोजन नहीं था। इसलिए मुर्गी कभी टिड्डियों और कुछ कुछ चीज को पकड़ती और आप जानते हैं, और छोटे चूजों को बुलाती, और वे सारे उसके छोटे छोटे चूजे कुड़क कुड़क की आवाज करते हुए साथ साथ चलते और खाते हैं। लेकिन यह छोटा उकाब ऐसा नहीं कर सकता, उसको ऐसा करने के लिए सही नहीं लगा। सो एक दिन उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आई, और वह तो मुर्गी की आवाज को सुनता, वह पूरी कोशिश करता कि कुड़क कुड़क करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसने चूजों की तरह चूचू करने की कोशिश की, लेकिन उससे हो न सका। देखिए, वो एक उकाब था, वो आरंभ से ही वो एक उकाब था। वह तो केवल मुर्गी के नीचे अंडे से निकला था, जैसे कि किसी कलीसिया का सदस्य होता है। हर एक लगभग ये इसी तरह से है, एक झुंड में से लगभग एक ही सही होता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ऊपर उड़ती हुई आई और उसने आवाज लगाई, उसने उसे पहचान लिया। यह आवाज समझ में आ रही है, क्यों? वो शुरू से ही एक उकाब था। इसी तरह से ये बात सुसमाचार के साथ है, या वचन या यीशु मसीह की सामर्थ। जब कोई व्यक्ति अनंत जीवन के लिए पहले ही से ठहराया गया हो, तो वह उसकी सच्ची आवाज को सुन लेता है, परमेश्वर की तेज पुकार को। इससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। कलीसिया यह कह सकती है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए हैं, कुड़क कुड़क कुड़क, यहाँ खड़े होकर और इसे खाओ, और यहाँ खड़े होकर और उसे खाओ। उस कूड़े के मैदान में पड़े पदार्थ उसके किसी काम का नहीं, वह चला जाता है। सब कुछ संभव है, वह जमीन पर से ऊपर उठता है। यही कारण है आज मसीही लोगों के साथ भी यही मामला है कि वे अपने पांव जमीन पर से ऊपर उठा नहीं सकते। उसकी नम्र माँ उससे कहती है, पुत्र छलांग लगाओ, तुम एक उकाब हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ आ जाओ। उसने कहा, माँ मैंने अपने जीवन में कभी छलांग नहीं लगाई। उसने कहा, तो ठीक है, छलांग मारो, तुम आरंभ से ही एक उकाब हो, तुम एक चूजे नहीं हो। तो उसने पहली बार छलांग लगाई और अपने पंख फड़फड़ाए। बहुत अच्छे से तो नहीं किया, लेकिन जमीन पर से ऊपर उठ गया। इसी प्रकार हम भी करते हैं, विश्वास से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं लिखे हुए वचन के द्वारा। वहाँ हमारे अंदर कुछ तो है, यही वो अनंत जीवन है जिसके लिए आप ठहराए गए थे। उसके दादा और दादी उकाब थे, वो एक उकाब था। उससे पहले जितने भी थे, उकाब दूसरी चीजों के साथ मिश्रित नहीं होता है, वह किसी प्रकार से संकरित नहीं है, वो एक उकाब है। फिर जब वो परमेश्वर के उसी वचन को पहचान लेता है, वही उसका भोजन है, तब आप दूसरी चीजें छोड़ देते हैं, तब आप अपने जीवित परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाते हैं। आप अपने दैविक शरीर से सुनते हैं। यदि यह धरती की देह गिराई जाती है, तो हमारे पास एक हमारी प्रतीक्षा में है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या यह सही बात है? अच्छा, ठीक है, तो आइए हम उन कुछ उकाबों को लें और कुछ देर के लिए उन्हें देखेंगे। एक बार एक मूसा नाम का व्यक्ति था। हम सब जानते हैं बाइबल में भविष्यवक्ता को उकाब कहा गया है। मूसा नाम का एक भविष्यवक्ता था, और एक दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको वहाँ देश में नहीं जाने दिया, और वो एक चट्टान पर मर गया। वे दूत उसे वहाँ से उठाकर दूर ले गए और उसे दफन कर दिया। एक और मनुष्य एक उकाब था, उसको यहाँ तक कि मरना भी नहीं पड़ा, वो बस चलकर यर्दन के पार हो गया, और परमेश्वर ने उसके लिए नीचे रथ भेज दिया, और यह शारीरिक वस्त्र को उसने गिरा दिया और उठकर और अनंत पुरस्कार को ले लिया। 800 वर्ष के बाद, 800 वर्ष के पश्चात रूपांतर पर्वत पर यहाँ दोनों मनुष्य खड़े हुए थे। मूसा का शरीर सैकड़ों वर्ष पहले सड़ गया था, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे रूप में है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना उसे पहचान गए। आमीन। यदि यह धरती पर का डेरा सरीका घर गिराया जाता है, यदि आप परमेश्वर के गुण हैं और यहाँ धरती पर उन्हें प्रकट करते हैं, तो आपके लिए एक देह प्रतीक्षा कर रही है। जब आप ये संसार को छोड़ेंगे, वहाँ वह रूपांतर के पर्वत पर उनके दैविक शरीर में खड़े थे, क्योंकि वे भविष्यवक्ता थे जिनके पास वचन आया। आइए हम दूसरे भविष्यवक्ता पर ध्यान दें, जो एक समय पर था, शमूएल नाम का। वो महान व्यक्ति था, उसने इज़राइल को सिखाया, उन्हें बताया कि उनके पास राजा नहीं होना चाहिए। उसने कहा, क्या मैंने कभी भी कोई बात परमेश्वर के नाम से कही है जो पूरी ना हुई हो? उन्होंने कहा, नहीं, तूने जो भी बात परमेश्वर के नाम से जब भी कही, वो पूरी हुई है। वो भविष्यवक्ता था और वो मर गया। लगभग 3 या 4 वर्ष के बाद राजा संकट में पड़ गया। यह यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से पहले की बात है। वो अधोलोक में था, और एंडोर की जादूगरनी ने किसी को शाउल को सांत्वना देने के लिए बुलाया, और जब जादूगरनी ने उसे सामने खड़े देखा, तो उसने कहा कि मैं ईश्वर को धरती पर से ऊपर उठते हुए देख रही हूँ। और मनुष्य के मरने के बाद दफनाया गया और कब्र में सड़ गया, और वो वहाँ अपने भविष्यवक्ता के वस्त्र को पहने हुए गुफा में खड़ा हुआ था, और अब भी एक भविष्यवक्ता है। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि तूने क्यों मुझे मेरे विश्राम में से बुलाया, देखते हुए कि तू परमेश्वर का शत्रु हो गया है। उसकी भविष्यवाणी पर ध्यान दें। कल रात इस समय तू मेरे साथ होगा। हालांकि वह अपना यह शरीर छोड़ चुका है, फिर भी वो एक भविष्यवक्ता है। देखिए, वो यहाँ आकर और उस वचन का भाग बन गया था और वो शरीर से निकलकर उस शरीर में आ गया जो उसके लिए संसार की बुनियाद डालने से पहले तैयार किया गया था। वो दैविक शरीर में प्रवेश कर गया जो कि वचन था। आपने इसे समझा? यही है जहाँ सारे विश्वासी जाते हैं। जब हम यहाँ से निकलते हैं तब उस रूप में तब पर्दा उठ जाता है। आप देखिए, आप वचन भी हैं जब आप उसमें प्रवेश करते हैं, एक छोटे बालक के समान, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था। अब ध्यान दें, इन खुलने वाली मोहरों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मेरी प्रार्थना है इन बातों को जानने के लिए। अब मेलकिसेदेक का सच्चा प्रकाशन दृश्य में आता है। क्या वो परमेश्वर था? शरीर बनने से पहले वचन था परमेश्वर, जो वचन है, क्योंकि उसे होना ही था। उसके समान और कोई अमरहार नहीं हो सकता। देखो, मेरे पास पिता और माता हैं, आपके पास भी हैं। यीशु के माता और पिता थे, लेकिन इस मनुष्य का कोई पिता नहीं था या कोई माँ नहीं थी। यीशु का एक समय था जब उसका आरंभ हुआ, इसका कोई आरंभ नहीं था। यीशु ने अपना जीवन दे दिया। यह मनुष्य नहीं कर सकता था क्योंकि वो जीवन था, और यह तो हर समय अपने में एक ही मनुष्य था। मुझे आशा है परमेश्वर ने इसे आप पर प्रकट किया है, इस मनुष्य को जो हर समय अपने में एक ही है। उसके शीर्षक पर ध्यान दें, धार्मिकता का राजा। अब इब्रानियों 7:2, धार्मिकता का राजा और शांति का राजा, वो दो राजा है। अब ध्यान दें, इब्रानियों 7:2, धार्मिकता का राजा शांति का भी राजा है, वो वहाँ दो राजाओं में है। अब जब से वो शरीर में आया और उसने उसके शरीर को ऊपर ग्रहण किया, जो प्रकाशित वाक्य 21:16 में है, वो राजाओं का राजा कहलाया। वो तीनों ही हैं एक साथ। देखिए, राजा परमेश्वर, राजा दैविक शरीर, राजा यीशु, वो राजाओं का राजा है। ये सब उसमें मिलता है, जैसे कि प्राण, शरीर और आत्मा सभी आकर एक बनाते हैं। वह पिता भी है जो सबसे पहले था, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो आत्मा। धार्मिकता का राजा, आत्मा का गुण, दैविक शरीर, शांति का राजा, दैविक शरीर, और शरीर में वो राजाओं का राजा था, वही एक व्यक्ति। जब दैविक शरीर, मूसा ने उसे निर्गमन 33:2 में देखा, वह एक दैविक शरीर था। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था, उसने उसकी आवाज को सुना था, उसे उससे बात करते सुना। उसने उसे वहाँ झाड़ी में बड़े आग के खम्भे के समान देखा और उसने कहा, आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मूसा ने कहा, मैं रखे, यदि आप मुझे आपको देखने दें, मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ। उसने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे मुख को नहीं देख सकता। उसने कहा, मैं अपना हाथ तेरी आँखों पर रखूंगा और मैं तेरे पास से होकर निकलूंगा, तब तू मेरी पीठ देखेगा लेकिन मेरे मुख को नहीं। समझे? और जब उसने ऐसा किया तो वह मनुष्य की पीठ थी, वह एक दैविक शरीर था। तब वचन जो मूसा के पास आया, मैं हूँ जो वचन था। वचन मूसा के पास जलती हुई झाड़ी में एक आग के खम्भे के रूप में आया, वह मैं हूँ। जैसे कि वचन धर्म ज्ञानी से, मेरा मतलब, मुझे क्षमा करें, दैविक शरीर से, वह बतूल के पेड़ तले अब्राहम के पास एक मनुष्य के रूप में आया। अब वहाँ देखें, वहाँ अब्राहम के पास एक मनुष्य आया, उनमें से तीन और एक बतूल के पेड़ के नीचे बैठ गए, वे तीनों ही। और ध्यान दे, जब वो अब्राहम से बात कर चुका, वह क्यों आया? अब्राहम वो ही एक था जिसके पास प्रतिज्ञा थी और आने वाले पुत्र का संदेश, और वो परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता भी था, जो कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता था। और कोई भी चीज जो विरोध में हो तो वो उसे ऐसे समझता था कि मानो वो है ही नहीं। देखा वचन कितना सिद्ध होता है? वचन भविष्यवक्ता के पास आया। देखो, परमेश्वर एक दैविक शरीर में था, और बाइबल ने कहा वचन भविष्यवक्ता के पास आता है और यहाँ वो वचन दैविक शरीर में था। अब आप कहते हैं क्या यह परमेश्वर था? अब्राहम ने कहा ये था, उसने कहा उसका नाम था, उसने उसे एलोहिम कहा। अब उत्पत्ति एक में आपको मिलेगा, आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 18 में हम पाते हैं कि अब्राहम ने उस व्यक्ति से जो वहाँ बैठा था और उससे बात की, और जो उसके हृदय की गुप्त बातों को बता सकता था, जिसने उसे बताया कि सारा उसके पीछे बैठी क्या सोच रही थी। अब्राहम ने कहा यह एलोहिम है। वह एक दैविक शरीर के रूप में था, आप इसे समझे, ध्यान दें। बाद में अब हम पाते हैं कि वो तब दैविक शरीर के रूप में था, उसने उसे प्रभु परमेश्वर एलोहिम कहा। अब उत्पत्ति 18 में हम इसे बिल्कुल सही पाते हैं। अब ध्यान दें, अब्राहम वहाँ तीनों एक साथ थे, लेकिन जब अब्राहम तीनों से मिला उसने कहा मेरे प्रभु, लेकिन लूत वो नीचे सादोम में था, उनमें से दो वहाँ नीचे गए और लूत ने उन दोनों को आते देखा और उसने कहा मेरे प्रभुओं। देखिए क्या मामला है, पहली बात कि लूत एक भविष्यवक्ता नहीं था, यह सही बात है, या ना ही वो उस घड़ी का संदेश वाहक था, इसलिए उसके पास उसका कोई प्रकाशन नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है। लूत उन्हें प्रभुओं कह सकता है, यदि वे दर्जन भर भी होते वह तब भी प्रभुओं कहता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्राहम ने कितनों को देखा, यह फिर भी एक ही प्रभु था, वहाँ परमेश्वर है, यह मलकीसेदिक था। ध्यान दें, लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद मलकीसेदिक ने अपने विजयी बालक को प्रभु भोज दिया। इस पर सोचें, स्वयं का भाग। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ प्रतिछाया में है, दृश्य में प्रभु भोज। युद्ध के पश्चात उसने अपने आप को दे दिया, क्योंकि प्रभु भोज मसीह का भाग है। और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है, जब आप खुद को पूरी तरह थका चुके होते हैं, तब आप मसीह के भागीदार होते हैं, इस अस्तित्व के भाग हो जाते हैं। आप इसे समझ गए? याकूब सारी रात मल युद्ध करता रहा और उसको तब तक ना छोड़ा जब तक उसने उसे आशीषित नहीं कर दिया। यह सही है, जीवन के लिए संघर्ष किया, और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तब परमेश्वर अपने आप को आपको दे देता है। यही उसका सच्चा प्रभु भोज है। रोटी का छोटा टुकड़ा और पतली रोटी बस इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको इसे नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप इसे मल युद्ध ना करें और परमेश्वर का भाग न बन जाएं। याद रखें, इस समय तक प्रभु भोज को संस्थापित नहीं किया गया था, तब तक नहीं जब तक यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हो गई, सैकड़ों और सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष बाद। लेकिन मलकीसेदिक अपने बालक अब्राहम की विजय को पाने के बाद ही मलकीसेदिक उससे मिला और उसे दाखरस और रोटी को दिया। ये दिखाता है कि इस धरती के युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद हम उससे स्वर्ग में मिलेंगे और फिर से प्रभु भोज को लेंगे, या वो विवाह का भोज होगा। मैं अब से दाखरस को ना पीऊंगा या ना ही फल खाऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में इसे नए सिरे से ना खाऊं और पीऊं। क्या यह सही है? फिर से ध्यान दें, मलकीसेदिक अब्राहम से मिलने गया इससे पहले कि वह घर वापस आए। हमारे पास यहाँ कितना सुंदर नमूना है, इससे पहले अब्राहम लड़ाई के बाद घर वापस जाता, मलकीसेदिक अब्राहम से मिल रहा है। इससे पहले हम घर पहुँचे, हम यीशु से हवा में मिलते हैं। यह सही है, दूसरा थिस्सलुनीकियों ऐसा बताता है, हम उससे हवा में मिलेंगे। रिबिका का कितना सुंदर नमूना है, मैदान में इजाक से मिल रही है, दिन के ठंडे समय में हम उससे हवा में मिलेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों ऐसा बताता है। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो उन सोए हो से आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तो जो मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ मिलकर उठाए जाएंगे कि प्रभु से हवा में मिले। सिद्ध है ये सारे नमूने। इसलिए दैविक शरीर, यदि आप मर जाते हैं और उस दैविक शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? दैविक शरीर धरती पर आकर छुड़ाई हुई देह को उठा लेता है, और यदि आप यहाँ हवा में हैं तो आप इस देह को लेकर दैविक शरीर से मिलते हैं। आप वहाँ पर हैं और ऊपर उठाए जाकर और हवा में प्रभु से मिलते हैं। यह मलकीसेदिक कौन है सिवाय परमेश्वर के? अब हम यहाँ साफ साफ पूरी तरह से इस यात्रा में हमारे जीवन के भेदों को देखते हैं और मृत्यु और मरने के पश्चात हम कहाँ जाते हैं और पहले से ठहराया जाना भी अब यहाँ साफ दृश्य पर है। अब जब हम इसे खोलकर बताते हैं तो ध्यान से सुनना। उसके अनंत उद्देश्य के चरणों को जो उसके रहस्य में थे ये अब प्रकट हो गए हैं। ध्यान दें, वहाँ अब भी सिद्धता के लिए तीन चरण हैं। ठीक जिस प्रकार से वह संसार को छुड़ाता है उसी प्रकार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाता है। वह लोगों को तीन चरणों में से होकर छुड़ाता है। अब देखिए, पहला है धर्मीकरण जैसे लूथर ने प्रचार किया, दूसरा पवित्रीकरण जैसे वेस्ली ने प्रचार किया, तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यह सही है, तब रैप्चर आता है। अब संसार, उसने संसार को कैसे छुड़ाया? पहले उसने क्या किया? जब इसने पाप किया उसने पानी के बपतिस्मे से इसे धो दिया, यह सही बात है। तब उसने क्रूस पर से इस पर अपना लहू गिराकर और इसका पवित्रीकरण किया और इसे अपना कहा। और उसके बाद वो क्या करता है? जैसे कि उसने आप में से संसारिक बातों को निकाल दिया और पवित्र आत्मा के अग्नि के बपतिस्मे के द्वारा आपको नया बना दिया, वह संसार को भी नया रूप देगा और यह आग से जल जाएगा और लाखों मील ऊंचाई तक हर एक जीवाणु को और हर एक चीज को साफ कर देगा और तब वहाँ नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। ठीक जैसे कि पवित्र आत्मा ने जब आपके ऊपर अधिकार लिया और आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो गए। देखिए, आप वहाँ पर हैं। सारी बात बस उतनी ही स्पष्ट है जितनी यह हो सकती है। हर एक चीज तीन में है, स्वाभाविक जन्म भी तीन में है। वो पहली चीज क्या होती है जब स्त्री बालक को जन्म देती है? पहले क्या आता है? पानी। फिर क्या आता है? लहू। अगली प्रक्रिया क्या है? जीवन, पानी, लहू और आत्मा। पौधे में क्या होता है जब दाना सड़ जाता है? पहली चीज क्या होती है? डंठल। फिर अगला क्या होता है? फूंदनी। अगला क्या है? भूसी। तब उसमें से देखो दाना बाहर आता है। बस इसके तीन चरण हैं। जब तक वो दाने तक नहीं पहुंचता है, यह बिल्कुल सही है। परमेश्वर इसे प्रमाणित करता है, यह हमेशा सही रहा है। परमेश्वर इसे सत्य प्रमाणित करता है, साफ साफ से दिखाता है। पहले से ठहराया हुआ ही केवल वो एक है जिसे छुटकारे में माना जाता है। अब आपने इसे समझा? मैं इसे फिर बताता हूँ। पहले से ठहराए हुए केवल वही वो एक हैं जिसे छुटकारे के लिए गिना जाता है। लोग ऐसा दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं कि वे हैं, लेकिन सही छुटकारा उन्हीं का होता है जो पहले से ठहराए हुए हैं, क्योंकि शब्द छुड़ाने का अर्थ है कि उसी स्थिति में वापस लाना। क्या ये सही है? छुड़ाना, यह कुछ तो ऐसा है, किसी भी चीज को छुड़ाना, उसे उसकी पहली मूल स्थिति में वापस लाना है। हालेलुया। इसलिए जो पहले से ठहराए हुए हैं वही वापस लाए जाएंगे, क्योंकि दूसरे वहाँ से आए ही नहीं है। समझे? वापस लाना, अनंतता में उसके साथ होना, आरंभ में अनंत जीवन जो आपके पास था, उसका विचार जो आप थे, केवल वो चाहता था कि आप कहें तो वो मुझे ही चाहता था कि मैं पुलपिट पर खड़ा हूँ, और आज रात वो चाहता था आप कुर्सी पर बैठे हों। तब हम उसके अनंत उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं और वह एक जो घर को छोड़कर केवल पृथ्वी पर उसके उद्देश्य की सेवा को पूरी करने आया है। क्या ये सही है? तो ठीक है। तब जब यह पूरा हो जाता है तब यह वापस महिमावंत स्थिति में लाया जाता है और यह परिपक्व होकर फिर से लाया गया है। कोई आश्चर्य नहीं, जब वो स्थान तैयार हो रहा था जहां उसका सिर काटा जाना था तो पौलुस कह सकता था, उसने कहा, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे कब्र तेरी विजय कहां है? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यह जय को देता है। उसने कहा, मृत्यु तू मुझे बता कि तू मुझे कहां चिल्लाने को लगा सकती है, कब्र तू मुझे बता कि तू मुझे कैसे पकड़ कर रख सकती है, क्योंकि मैं तो अनंत जीवन का अधिकारी हूँ। आमीन। उसने इसे पहचान लिया, मृत्यु, अधोलोक, कब्र, उसे कोई भी नहीं पकड़ कर रख सकता, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हमारे पास अनंत जीवन है। वो यह जान चुका था कि वह अनंत जीवन से आशीषित है। ठीक जैसे कि छोटी सी ओस की बूंद, यदि मैं समझता हूँ, ये मैं रसायन विज्ञान के विषय में बहुत अधिक नहीं जानता, लेकिन यह अवश्य ही उस नमी या वायुमंडल का जमना है, और जब रात ठंडी और अंधेरी हो जाती है तब यह आकाश से गिरती है और जमीन पर गिरती है, यह कहीं से तो गिरती है, लेकिन अगली सुबह सूर्य निकलने से पहले यह छोटी सी चीज वहाँ पड़ी रहती है, कपकपाती है, लेकिन ठीक सूर्य के निकलते ही देखिए यह बूंद चमकने लगती है। यह खुश है, क्यों? क्योंकि सूर्य उसको वहीं वापस बुला रहा है जहाँ से वो आई थी। और ऐसे ही एक मसीही के साथ होता है। हालेलुया, हम जानते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, कोई तो चीज हमें यह बताती है कि हम कहीं से आए हैं और हम उस सामर्थ के द्वारा खींचते हुए फिर से वापस जा रहे हैं। वह छोटी ओस की बूंद जगमगाती है और चमकती है और जय जयकार करती है, क्योंकि उसे पता है कि वह ऊपर से आई है और वह सूर्य उसे फिर से खींच कर सीधा वापस ले जाने वाला है। और वह एक मनुष्य जो परमेश्वर का गुण है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वो जानता है। हालेलुया, जब वो परमेश्वर के पुत्र के संपर्क में आता है तो एक दिन वो यहाँ से खींच कर ऊपर वापस चला जाएगा। यदि मैं धरती पर से ऊंचे पर उठाया जाऊँ तो मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। आमीन।
Now, notice, now we see Melchizedek, and why?
अब ध्यान दें, अब हम मलकीसेदिक को देखते हैं और क्यों मरियम उसकी माता नहीं थी।
That's the reason he called her woman, not mother.
यही कारण है कि उसने उसको स्त्री कहा, माँ नहीं कहा। उसका कोई पिता नहीं था, क्योंकि वह पिता था, सनातन का पिता, वह तीन एक में। उसकी कोई माँ नहीं थी, निश्चय ही नहीं। उसका कोई पिता नहीं था, क्योंकि वो पिता था। जैसे कि कवि ने एक बार कहा है, उसकी प्रशंसा में ये वो यीशु के लिए बोल रहा है। उसने कहा, वो मैं हूँ जो मूसा से बोला अग्नि की जलती झाड़ी में, मैं हूँ अब्राहम का परमेश्वर, वो चमकता और भोर का तारा, मैं हूँ अल्फा ओमेगा और अंत से ही आरंभ हूँ, मैं हूँ वो सारी सृष्टि और यीशु वो नाम है। यह सही है। ओह, तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ और वे कहाँ से कहते हैं कि मैं आया हूँ? क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या तुम उसका नाम बता सकते हो? हालेलुया, यही मेरे पिता का नाम है। जी हाँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। समझे, निश्चय ही वो कल आज और सर्वदा एक सा है। और यह मलकीसेदिक जो देह बन गया, उसने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में एक भविष्यवक्ता बनकर प्रकट किया। वो एक पुत्र के तीन नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। जब वो यहाँ धरती पर था तो वचनों को पूरा करने के लिए वो एक मनुष्य था। मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठा खड़ा करेगा। इसलिए उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में आना था। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसने कहा, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। क्या आप मनुष्य के पुत्र का विश्वास करते हैं? क्योंकि यही है जिसकी उसे गवाही देनी थी, क्योंकि यही तो वो था। अब वो पुत्र के दूसरे नाम में आया है, परमेश्वर का पुत्र, ना दिखने वाला, वो आत्मा। और वह जब फिर से आता है तो वह दाऊद का पुत्र होगा, ताकि अपने सिंहासन पर बैठे। अब जब वो यहाँ पर था और देहधारी हुआ था, वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। अब उसने संसार पर अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में कैसे प्रकट किया? एक दिन मैं पतरस और उसके भाई अंद्रियास की कहानी सुना रहा था। वे मछुआरे थे और उनका पिता योना एक महान पुराना विश्वासी था। एक दिन उन्होंने कहा कि वह नाव की एक ओर बैठ गया। उसने कहा, पुत्रों, तुम जानते हो जब हमें मछलियों की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? वे व्यापार करने वाले मछुआरे थे। उसने कहा, हम यहोवा परमेश्वर पर अपनी जीविका के लिए विश्वास रखते हैं, और अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता, और मैं हमेशा और सच्चे विश्वासी की नाई उस समय की बाढ़ जोता आ रहा हूँ कि मसीहा कब आएगा। अब तक तो सभी प्रकार के झूठे मसीहा आते रहे हैं, लेकिन एक दिन एक सच्चा मसीहा आने वाला है। और उसने कहा, जब यह मसीहा आता है तो मैं नहीं चाहता कि लड़कों तुम भरमाए जाओ। यह मसीहा ऐसे ही एक धार्मिक विद्या का ज्ञानी नहीं होगा, वो एक भविष्यवक्ता होगा, क्योंकि हमारा भविष्यवक्ता मूसा, जिसका हम अनुकरण करते हैं, उसने कहा अब कोई भी यहूदी अपने भविष्यवक्ता का विश्वास करेगा, उसको यही सिखाया गया है। और यदि भविष्यवक्ता ऐसी कोई भी चीज कहता है तो यह सत्य है। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हारे बीच में कोई आत्मिक हो या एक भविष्यवक्ता हो तो मैं प्रभु उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा, और जो वो कहे और वही घटित हो तो उसकी सुनना और उससे डरना, लेकिन यदि वैसा न हो तो उसकी नहीं सुनना। समझे? इसलिए यही उस भविष्यवक्ता का प्रमाण था। इसलिए मूसा सच में एक प्रमाणित भविष्यवक्ता था, और उसने कहा तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम भाइयों के बीच से मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठाकर खड़ा करेगा, और जो उसकी नहीं सुनेगा वह अपने लोगों में से नाश किए जाएंगे। उसने कहा अब बच्चों याद रखना कि इब्रानियों के रूप में हम परमेश्वर के प्रमाणित भविष्यवक्ताओं का विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनना और इससे चूकना मत। और उसने कहा जब मसीहा आता है तो तुम जान लोगे, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता मसीहा होगा। अब उन्होंने कहा कि 400 वर्ष हो गए हैं मलाकी के बाद से लेकर हमारे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन वो होगा। उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद एक दिन उसका पुत्र अंद्रियास झील के किनारे पर टहल रहा था, और उसने जंगल में से एक जंगली मनुष्य की आवाज सुनी जो कह रहा था अब मसीहा तुम्हारे बीच में खड़ा है। वो बड़ा उकाब जो जंगल में ही बड़ा हुआ था और वहीं पर उड़ा, कहा मसीहा ठीक अभी तुम्हारे बीच में है, हम अभी उसे नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है, मैं उसे पहचान लूंगा, क्योंकि मैं एक चिन्ह को स्वर्ग से आता देखूंगा। एक दिन उसने कहा वहाँ देखो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। दूर चला वो मनुष्य अपने भाई को ढूंढने चला गया। उसने कहा शमौन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ आओ, क्योंकि हमने मसीहा को पा लिया है। ओह आगे बढ़ो अंद्रियास, तुम इससे अच्छा जानते हो। ओह मैं जानता हूँ, लेकिन यह ये मनुष्य भिन्न है। वो कहाँ पर है? वो कहाँ से आया है? नासरत का यीशु, वो छोटा सा दुष्ट नगर। क्यों? वह इस तरह के दुष्ट गंदे स्थान से नहीं आ सकता, तुम बस आकर और देखो। अंत में एक दिन उसे वहाँ आने के लिए मना लिया। इस प्रकार जब वो इस मसीहा के सामने आया तो यीशु लोगों से बात कर रहा था। जब वो यीशु के सामने चलकर आया तो उसने कहा तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। इसी से वो जान गया, उसे स्वर्ग के राज्य के लिए चाबी मिल गई। क्यों? उसे पता था कि यह मनुष्य मुझे नहीं जानता, और उसने उसे कैसे जाना, और उसके बूढ़े धर्मी पिता ने उसे सिखाया था कि मसीहा पर कैसे विश्वास किया जाए। वहाँ पर फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। ओह वह बहुत ही उत्तेजित हो उठा। वह एक और व्यक्ति को जानता था जो बाइबल का अध्ययन करता था, और वह पहाड़ी के पास चला गया और उसने उसे उसके जैतून के बगीचे में पाया। वह नीचे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने एक साथ बहुत से बाइबल के पाठ पढ़े थे, तो वह वहाँ पर आ गया और उसने कहा जब वो प्रार्थना करके आया तो उसने कहा आओ देखो हमने किसे पाया है, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, वो मसीहा है जिसकी हम बात जो रहे थे। मैं नतनेल को यह कहते हुए सुन सकता हूँ अब फिलिपुस तुम ज्यादा गहराई में चले गए हो, क्या तुम नहीं गए हो? ओह नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जानते हो कि हम एक साथ बाइबल का अध्ययन करते आ रहे हैं, और भविष्यवक्ता ने मसीहा के लिए क्या बताया कि वो कैसा होगा? वो एक भविष्यवक्ता होगा। तुम्हें वो बूढ़ा मछुआरा याद है जिससे तुमने मछली को खरीदा था, जिसके पास इतनी भी शिक्षा नहीं थी कि उसके नाम का हस्ताक्षर करे, जो शमौन कहलाता है। हाँ वो वहाँ पर आया, तो तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? इस यीशु नासरी ने उसे बताया कि उसका नाम शमौन है, उसका नाम बदलकर पतरस कर दिया जिसका अर्थ छोटा पत्थर है, और उसे बताया कि उसका पिता कौन था। तो ठीक है, उसने कहा मैं नहीं जानता, क्या कोई अच्छी चीज भी नासरत से निकल सकती है? तो उसने कहा इस विषय में बात न करें, बस वहाँ आकर और देख लो, यह एक अच्छा विचार है, आकर और देख लो। तो यहाँ फिलिपुस नतनेल को लेकर आता है, और जब वो चलकर आ रहा था तब शायद यीशु खड़ा हुआ बोल रहा था, प्रार्थना की पंक्ति में बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ यीशु था, तो यीशु ने उसकी ओर देखकर और कहा देखो यह एक इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो ठीक है उसने इस तरह के कपड़े पहने थे। ओ ऐसा नहीं, वह पूर्वी लोग एक से कपड़े पहनते थे। वह एक सीरियन भी हो सकता था या कोई और भी हो सकता था, दाढ़ी कपड़े। तो उसने कहा देखो एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं, अन्यथा एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति। इस प्रकार की बात से नतनेल की हवाइयाँ उड़ गई, और उसने कहा, रब्बी, जिसका अर्थ होता है गुरु, रब्बी, तू मुझे कब से जानता है? तुझे कैसे पता कि मैं एक यहूदी हूँ? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं ईमानदार हूँ और कोई कपट नहीं? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाता, जब तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। 15 मील दूर देश के दूसरे किनारे पर एक दिन पहले। उसने क्या कहा? रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है। परंतु वहाँ वे याजक खड़े हुए थे, स्वयं घोषित, स्वयं भू, कहा, यह मनुष्य बाल जबूल है, एक भविष्य बताने वाला है। यीशु ने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा करूंगा। अब ध्यान रखना, उन्होंने ये चिल्लाकर नहीं कहा, उन्होंने अपने हृदय में कहा, और उसने उनके विचारों को जान लिया। यह सही बात है, बाइबल यही बताती है। यदि आप चाहें तो टेलीपैथी या मनो का पढ़ने वाला कहें, लेकिन उसने उनके विचार जान लिए और उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा करता हूँ, लेकिन एक पवित्र आत्मा आने वाला है और इसी काम को करेगा। उसके चले जाने के बाद उसके विरोध में एक भी शब्द बोलना इस संसार में या आने वाले संसार में कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। क्या यह सही है? अब यह यहूदी थे, तब एक दिन उसको सामरिया जाने की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करें, हमने उस स्त्री को पाया या वो मनुष्य, जब वो सुंदर नामक फाटक को पार करके गया कि वो चंगा हुआ था, और यीशु उसकी स्थिति को जान गया और उसे बताया, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, और उसने ऐसा ही किया और चंगा हो गया। तब हम यहूदियों को देखते हैं, उनमें से कुछ ने उसे ग्रहण किया, कुछ ने इसका विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। उन्होंने क्यों इसका विश्वास नहीं किया? वह जीवन के लिए ठहराए हुए नहीं थे, वे उसके गुण का भाग नहीं थे। और याद रखना, वे याजक थे और महान व्यक्ति थे, और यीशु उन धर्म ज्ञानियों और याजकों के विषय में सोचिए, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में आप जरा सा भी दोष नहीं पा सकते। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी के कार्य करते हो। कहा, यदि तुम परमेश्वर से होते तो मेरा विश्वास करते, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे उन कामों का विश्वास करो जो मैं करता हूँ, वे गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। अब बाइबल बताती है कि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वह काम वो भी करेगा जो मुझ पर विश्वास रखता है। क्या यह सही है? ध्यान दें कि वह अब वास्तविक मलकीसिदक था। फिर से अब ध्यान दें, लोगों की केवल 3 जातियां थी। आपने मुझे कहते सुना होगा, मैं एक अलगाववादी था, मैं हूँ। सारे मसीही अलगाववादी होते हैं, ना ही रंग भेदभाव के अलगाववादी, लेकिन आत्मा के अलगाववादी। एक व्यक्ति की खाल के रंग से उसका कुछ लेना देना नहीं, वह जन्म से ही परमेश्वर की संतान है। लेकिन एक मसीही के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए अलग हो, उन लोगों में से बाहर निकलो, और इत्यादि। वो एक अलगाववादी है, गंदगी का, सही और गलत के बीच का। लेकिन ध्यान दें, तब उनमें भेदभाव थे, एक जातीय भेदभाव, जो कि सामरी लोग थे। और वहाँ धरती पर लोगों की केवल 3 जातियाँ हैं, यदि हम बाइबल का विश्वास करें, जो कि हाम, शेम और येपेत के लोग हैं। नूह के ये 3 बेटे थे और हम सब उन्हीं में से निकले हैं। यह सही है, यह हम सबको आदम से पीछे ले जाता है, जो हम सबको भाई बनाता है। बाइबल कहती है, एक ही लहू से परमेश्वर ने जातियों की सृष्टि की है। लहू की धारा में से होते हुए हम सब भाई हैं। एक काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति को अपना लहू दे सकता है, या गोरा काले को। गोरा व्यक्ति उस जापानी को दे सकता है, पीला मनुष्य या भारतीय, लाल मनुष्य या ये जो कोई भी है, लहू को दे सकता है, या एक याफनी या जो भी हो उसे दे सकता है। वह अपने लहू को आदान प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम सब एक ही लहू से हैं। हमारी खाल के रंग से जहाँ भी हम रहते हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम संसार से निकल आते हैं तो हम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे उसने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाल लाया। यही है, जब हम संसार की वस्तुओं से अलग हो जाते हैं, तब वहाँ हाम, शेम और येपेत के लोग थे। और यदि हमारे पास समय होता कि हम पीछे उनकी वंशावली को देख सकते थे कि एंग्लो सैक्सन कहाँ से आए हैं। अब ये यहूदी थे, सामरी, जो आधे यहूदी और आधे अन्य जाति थे, जो बिलाम के और मोआब के कार्यकलापों में उन्होंने अन्य जातियों से विवाह किया। वे सामरी लोग थे और वहाँ यहूदी और अन्य जाति थे। अब हम एंग्लो सैक्सन लोगों का इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। हमने किसी मसीहा पर विश्वास नहीं किया, न ही कहीं किसी और पर। हम उस एक की राह नहीं देख रहे थे। हमें तो बाद में अंदर लाया गया था। यीशु उसके अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और उसने अपने चेलों से कहा अन्य जातियों के पास न जाना, लेकिन इसराइल की खोई हुई भीड़ों के पास जाना। और वो केवल इसराइल की खोई हुई भीड़ों के पास गया, और ध्यान दीजिए, उसने यहूदियों के सामने अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके प्रकट किया, और उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। अब सामरी, जो कि आधे यहूदी और आधे अन्य जाति थे, उन्होंने भी विश्वास किया और एक मसीहा की बाट जो रहे थे। हम बाट नहीं जो रहे थे, हम मूर्ति पूजक थे। हमारी पीठ पर लकड़ी के लट्ठे के साथ थे मूर्तियों को पूजने वाले अन्य जाति। लेकिन अब एक दिन संत यूहन्ना 4, उसको सामरिया से होकर अपने रास्ते येरियो को जाना था, लेकिन वो सामरिया में होते हुए चला गया था। और जब वो वहाँ से जा रहा था तो शहर से बाहर एक कुएं पर बैठ गया। वो नगर सुखार कहलाता था, और वो कुआं, यदि आप कभी वहाँ गए हो, यह छोटा सा मनोरम दृश्य है, लगभग जैसा ये यहाँ पर है। और वहाँ एक सार्वजनिक सोता है पानी का, जहाँ वे सब आते हैं। और एक सुबह स्त्री अपने पानी के घड़े के साथ आती है, और वह घड़े को अपने सिर पर और एक कमर के दोनों ओर रखती है, और उसे लेकर उतना ही सीधा चल सकती है जितना वो चल सकती है। कभी एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है एक दूसरे से बात करते हुए। सो वे लोग वहाँ पर आते थे। सो इस समय दिन के लगभग 11 बजे थे, इसलिए उसने अपने चेलों को नगर में कुछ खाद्य पदार्थ भोजन खरीदने को भेजा। और जब वो चले गए, वहाँ एक स्त्री आई जो कि बदनाम थी, एक आजकल हम लोग वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्री या वेश्या कहते हैं। उसके बहुत से पति थे। सो जब यीशु वहाँ बैठा हुआ था, तब वो स्त्री लगभग 11 बजे वहाँ आई। देखो, वह कुआरी भली स्त्रियों के साथ सुबह बर्तन धोने को पानी लेने के लिए उनके साथ नहीं आ सकती थी। उसे उन सभी के जाने तक रुकना होता था। वो आज की तरह आपस में नहीं मिलते थे, वो कलंकित थी। इसलिए फिर वो वहाँ पर पानी लेने को आती है, तो उसने बस पुरानी रस्सी को लिया और घड़े के ऊपर हुक को लगाकर और उसे नीचे उतारने लगी। तभी उसने किसी को तो कहते सुना कि स्त्री, मेरे लिए पानी देना। अब याद रखें, यह मलकीसेदक है, यह यीशु है, कल मनुष्य का पुत्र। और उसने यहाँ वहाँ देखा और उसने एक यहूदी को देखा, इसलिए उसने कहा, श्रीमान, एक यहूदी के लिए यह ठीक नहीं कि वह सामरी से कुछ मांगे। मैं सामरी स्त्री हूँ, इसलिए आपने अपने स्थान से बाहर बोला है। आपको मुझसे ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपस में व्यवहार नहीं रखते। उसने कहा, लेकिन यदि तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, तो तू मुझसे पानी को मांगती। उसने कहा, आप पानी को कैसे खींचते, कुआ तो गहरा है और आपके पास पानी खींचने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा, जो जल मैं दूंगा, वो जीवन का जल अनंत जीवन में उमड़ता है। उसने जब तक उसकी स्थिति को नहीं जान लिया, तब तक बात करता रहा। और फिर ध्यान देना, उसने अब उससे क्या कहा, जा और अपने पति को यहाँ बुला कर ला। और उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने सत्य कहा, क्योंकि तू 5 कर चुकी है, और अब जिसके साथ तू अब रह रही है वह भी तेरा नहीं है, और इसमें यह तूने सच ही कहा है। इस स्त्री और उन याजकों के झुंड के बीच अंतर पर ध्यान देना। वह परमेश्वर के विषय में उससे अधिक जानती थी, उस सारे याजकों के झुंड की तुलना में। इसे एक साथ रखे तो वह बोली, श्रीमान, मुझे जान पड़ता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। वो बोली, पिछले 400 वर्षों से हमारे पास कोई एक भी नहीं था। अब हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है, और जब मसीह आएगा तो यही है जो वो करेगा। मसीहा का यही चिन्ह था, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र था। कहा, जब वो आएगा तो यही करेगा, आप अवश्य ही उसके भविष्यवक्ता हो। उसने कहा, मैं वही हूँ, कोई और ऐसा नहीं कह सकता। उसने अपने पानी के बर्तन को वहीं छोड़ा और नगर की ओर दौड़ गई और कहा, आओ देखो, एक मनुष्य जिसने वह सब बता दिया जो मैंने किया, क्या यह वही मसीहा नहीं है? अब याद रखें, उसने अन्य जाति के अंतिम दिनों में इसी चीज को करने की प्रतिज्ञा की है। यहूदी 4000 वर्षों से मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और 4000 वर्षों की शिक्षा कि वो आ रहा है, और वह जब वहाँ आएगा तो वो क्या करेगा, और वह उसे देखने से चूक गए और उसे पहचानने से चूक गए। और जबकि उसने अपने आप को बाइबल की ही शब्दावली में प्रकट किया जो उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा जब वो एक दैविक शरीर हुआ करता था, और उसके बाद वो शरीर में आकर और उनके बीच में रहा, वे उसे देखने से चूक गए और उसके कामों को शैतान के काम कहा। अब हम 2000 वर्षों से शिक्षा देते आ रहे हैं प्रेरितों के बाद रोमन कैथोलिक कलीसिया के समय में से निकलते हुए, तब उसके बाद रोमन कैथोलिक ग्रीक और इत्यादि में से आगे आते हुए, फिर लूथर के युग से होकर और वेस्ली और जो भी है 900 भिन्न भिन्न संस्थाओं की शिक्षा नीचे आते हुए, उनके पास ये सारे युग थे शिक्षा के। अब उसने प्रतिज्ञा की है अंत समय के आने से ठीक पहले सदोम और अमोरा की तस्वीर फिर से उभर कर आएगी। जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही अंत समय के आने के दिनों में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से प्रकट करेगा, और अब थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे नहीं देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं एक व्यक्तिगत सर्वनाम, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वो कल आज और सर्वदा एक सा है, आप समझे। आप देखो सामरी लोग असल में मेरे पिछले रात के उपदेश से हाजिरा थी, देखिए एक दूषित प्रतिरूप, यहूदी सारा के प्रतिरूप थे या सारा वादी थे, लेकिन अन्य जाति मरियम का प्रतिरूप है, वो शाही बीज, अब्राहम के शाही बीज। अब इन अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा है कि वही परमेश्वर, वही मसीह यहाँ वापस आकर मनुष्य के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। क्यों? वो कल आज और सर्वदा एक सा है, और यदि वह उन यहूदियों को वहाँ से जाने दिया होता, साथ ही और उन्हें मसीहा के चिन्ह को देता, और फिर अन्य जातियों की शिक्षा के अंत में आकर उन्हें केवल धर्म ज्ञान के आधार पर ही अंदर जाने दिया होता, तो वो अन्यायी होता। उसे उसी चीज को करना होगा क्योंकि बाइबल ने कहा इब्रानियों 13:8 में कि वो एक सा है, और मलाकी 4 में और सारे भिन्न भिन्न वचनों में उसने प्रतिज्ञा की है कि अंतिम दिनों में कलीसिया बिल्कुल वैसे ही स्थापित होगी और संसार भी ऐसा ही होगा। आज संसार की ओर देखिए, सदोम की ओर देखिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर भूकंप की ओर देखिए, और वे बातें जो जगह ले रही हैं, कलीसिया की ओर देखें, और जो बाबुल इसकी बिगड़ी अवस्था में है संदेश वहाँ की ओर देखें, एक ओरल रॉबर्ट्स और एक बिली ग्राहम की ओर देखें, GRAHAM ग्राहम, इन सब कलीसिया में यह पहली बार ऐसा है कि किसी संदेश वाहक का नाम HAM हम शब्द पर खत्म होता है, जैसे अब्राहम ABRAHAM 7 अक्षर हैं, GRAHAM 6 अक्षर हैं। वो कहाँ पर है? संसार में 6 मनुष्य की संख्या या अंक है, मनुष्य को 6वें दिन रचा गया, लेकिन 7 परमेश्वर की संख्या या अंक है। अब उन लोगों को सदोम में देखें, और वहाँ उनके संदेश वाहक उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वह अब्राहम का शाही बीज कहाँ है? उनका चिन्ह कहाँ है जो उसने कहा था कि जैसे सदोम के दिनों में था वह परमेश्वर नीचे उतर आया और मनुष्य की देह में प्रकट हुआ था, और उसने ये बता दिया कि सारा पीछे तंबू में अपने हृदय में क्या सोच रही थी। अन्य जातियों का संसार जब आग से नष्ट हुआ उससे पहले ये अंतिम चिन्ह था, और कलीसिया ने अपना अंतिम चिन्ह इस सारे संसार के नष्ट होने से पहले पा लिया है। यह अन्य जातियों का राज्य आग और परमेश्वर के क्रोध से नष्ट होने को है। आप ये विश्वास करते हैं? वो मलकीसेदेक शरीर था, उसने अपने को मनुष्य शरीर में प्रतिनिधित्व किया, और फिर बाद में वो देहधारी हुआ था, और अब आज रात वो कल आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तब ये मलकीसेदेक कौन है? वही जो कल था आज भी वैसा ही है, जिसका कभी कोई पिता नहीं था, कभी इसकी कोई माँ नहीं थी, उसके दिनों का कोई आरंभ नहीं था, और उसके जीवन का कोई अंत नहीं था, और वो अब्राहम से मिला, और उसने किस प्रकार के चिन्ह को प्रकट करके दिखाया। फिर जब वो देहधारी हुआ था तो उसने कहा कि अंत समय से पहले यही चिन्ह फिर से दोहराया जाएगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? मैं इसे विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि वचनों में जो आपने कहा है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, और पूरी सच्चाई और हृदय से मैं जानता हूँ प्रभु कि कुछ तो बात जगह लेने जा रही है। मैं पूरी तरह से इसे पहचान नहीं सकता, मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ प्रभु। आप अपने दास के हृदय को जानते हैं, और इन युगों में होते हुए आपने बहुत बार लोगों के पास बहुत सारी चीजों को भेजा जिन्हें लोग समझने से चूक गए। मनुष्य लगातार इसी बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करता रहा जो परमेश्वर ने किया, और कहता रहा है कि कितनी महान बातें वो करने जा रहा है, लेकिन इस बात को अनदेखा कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। युगों से ऐसा ही होता आ रहा है। रोमन कलीसिया संत पैट्रिक को परमेश्वर के भविष्यता के रूप में देखने से क्यों चूक गया? क्यों उन्होंने जॉन ऑफ आर्क को जादूगरनी कहकर जला दिया जबकि वह एक भविष्यवक्तिनी थी? पिता, हमेशा ऐसा ही हुआ है। आपने इसे ज्ञानियों और बुद्धिमानों की आंखों से छुपा कर रखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उन याजकों से कहा कि तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रों को सजाते हो, और तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उन्हें वहाँ डाला है। उनके जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का अनुभव होता है। प्रभु, आप किसी भी रूप में आए, उन्होंने आपको सताया है। परमेश्वर, आज रात में आपसे बस एक बार और प्रार्थना करता हूँ। कल हमारा टूसान जाने का कार्यक्रम है। संसार के दूसरे भागों में, दूसरे शहरों में हमें अवश्य ही प्रचार करना है, लेकिन प्रिय परमेश्वर, हो सकता है आज रात यहाँ भी कुछ अजनबी लोग हैं जिन्होंने कभी भी उन्होंने वचन का प्रचार सुना है लेकिन इससे प्रकट होते कभी नहीं देखा। जैसा कि मैंने आरंभ में आपसे कहा, जब वो चेले क्लोपास और उसका मित्र इमाउस से आ रहे थे, मार्ग में से चलते हुए आ रहे थे, और आपने झाड़ी से बाहर कदम रखा और उनसे बात करना आरंभ किया, पुनरुत्थान के बाद उन्हें प्रचार किया। क्यों? उसने कहा, निबुद्धियों और समझ में मत मंदियों, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह को ऐसे ही दुख उठाकर और उसकी महिमा में प्रवेश करना चाहिए? लेकिन वह फिर भी इसे नहीं पहचान सके। वह पूरे दिन आपके साथ चले और फिर भी आपको नहीं जान सके, लेकिन एक रात, रात हो गई, उन्होंने आपको अंदर आने को विवश किया। जब वे एक छोटे सराय के अंदर चले गए और द्वार बंद कर लिया, तब आपने कुछ तो ऐसा किया जो कि आपने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था, और उन्होंने पहचान लिया कि यह जी उठा मसीह है। कुछ ही क्षणों में आप पर्दे के पीछे छिप गए और चले गए। तुरंत ही वे चेलों को बताने के लिए भागे कि प्रभु सचमुच जी उठा है। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अब भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित हैं, और आपने हमें इसे कई बार साबित किया है। क्या आप इसे बस हमारे लिए एक बार फिर से करेंगे प्रभु? यदि हम आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाए तो एक बार फिर से होने देना। मैं आपका दास हूँ, ये सब यहाँ आपके दास हैं। प्रभु, ये सब जो मैंने कहा है उस पर नहीं, आपकी ओर से केवल एक ही शब्द मेरे इन पांच रातों से बहुत अधिक बढ़कर है। मेरा मतलब पांच संदेशों से यह बढ़कर होगा। आपकी ओर से केवल एक शब्द, प्रभु, क्या आप नहीं बोलेंगे जिससे कि ये लोग जान सकें कि मैंने उन्हें सत्य बताया है? परमेश्वर, इसे प्रदान करें। मैं एक बार फिर इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब मैं आपको नहीं जानता, मैं यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं इस लड़के को जो यहाँ बैठा है जानता हूँ, बिल डॉच जो ठीक वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें जानता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ भाई ब्लेयर हैं, रॉडनी कॉक्स, यहाँ इस ओर बाहर देखना कठिन है। इस ओर मैं इस समय ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ वास्तव में जिसे मैं जानता हूँ। अब यहाँ कितने ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि मैं उनके लिए अपरिचित हूँ? कृपया वे लोग हाथों को ऊपर उठाएं जो जानते हैं कि मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। दोनों ओर अपने हाथों को ऊपर उठाएं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ कोई परेशानी है और ये जानते हैं कि मैं उनकी परेशानी के विषय में मैं कुछ नहीं जानता? क्या आप लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे? अब ये किसी भी प्रकार से मेरे लिए बिल्कुल असंभव होगा कि मैं आपके विषय में कुछ भी जानूं, अन्यथा तब इसे आत्मा के किसी प्रकाशन से आना होगा। और ऐसा होने के लिए मैं आप लोगों को पिछली रातों में और आज रात को बता चुका हूँ कि वो मरा नहीं है, वो यहाँ पर है, और उसने उसी काम को करने की प्रतिज्ञा की है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, मलाकी चार के अनुसार और संत लुका के अनुसार, कि वह मनुष्य के रूप में अपने लोगों के बीच फिर से प्रकट होगा, और वह उसी काम को करेगा और उन्हीं चीजों को और उसी मसीहा के चिन्हों को प्रकट करेगा। आप बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग ये जानते हैं जो जानते हैं कि यही सच्चाई है? कहें आमीन। अवश्य ही सारे बाइबल पढ़ने वाले हैं। अब मैं जानता हूं कि लोगों के लिए आज ये बात अपरिचित है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई है। यही वो कारण है कि वह यीशु नासरी को नहीं जान पाए। वे अपने कलीसिया के मत सिद्धांत को जानते थे, लेकिन उसे नहीं जान पाए। लेकिन वह तो ठीक उसी प्रकार आया जैसा बाइबल ने कहा था, ना ही एक धर्मज्ञानी, ना ही एक याजक, वह एक भविष्यवक्ता की नाई आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यदि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, और यदि ऐसा हो कि यह किसी ऐसे व्यक्ति पर उतरता है जिसे मैं जानता हूँ, तो मैं किसी और को ले लूँगा। देखिए, मैं किसी ऐसे को लेना चाहता हूँ जिसे मैं नहीं जानता, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। अब देखिए, एक बार एक छोटी सी स्त्री थी जो दुर्बलता से घिरी थी। उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दिया। वे उसका कुछ भी भला नहीं कर सके, और वह अपने हृदय में बोली, यदि मैं उस मनुष्य का वस्त्र छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपको वो कहानी याद है? और इस तरह उन लोगों ने कोशिश की कि वह स्त्री पीछे ही रहे, लेकिन वह तब तक यत्न करती रही जब तक उसने भीड़ से होकर उसके वस्त्र को ना छू लिया और वापस निकलकर और बैठ गई। अब जरा ध्यान से सुनना, और जब यीशु ने ऐसा किया, जब उस स्त्री ने ऐसा किया, यीशु ने घूमकर पूछा, मुझे किसने छुआ? क्यों उस प्रेरित पतरस ने उसे झिड़का? उसने शायद कुछ ऐसे कहा होगा, प्रभु इस तरह की बातें मत कह, लोग विश्वास करेंगे कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब आपने उनसे कहा कि वे आपका मांस खाएं और आपका लहू पिए, तब से वे सोच रहे हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और आप कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? क्यों सारी भीड़ आपको छू रही है? उसने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि मुझमें से सद्गुण निकला है। यह एक भिन्न प्रकार का स्पर्श था। अब हर कोई जानता है कि सद्गुण यह सामर्थ्य है। मुझे कमजोरी महसूस हुई, मुझमें से सद्गुण निकला है। और उसने भीड़ को देखा जब तक उसने उस छोटी स्त्री को न पा लिया और उसके लहू बहने के विषय में उसे बताया, और उसने अपने शरीर के अंदर ये महसूस किया कि लहू बहना बंद हो गया है। क्या यह ठीक है? और उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। अब वहाँ यूनानी भाषा में सोजो शब्द होता है, जिसका सही अर्थ होता है शारीरिक या आत्मिक तौर पर बचा लिया। बिल्कुल वैसे ही उसने बचा लिया। वह आपका बचाने वाला है। अब यदि वो ऐसा कल था, और जिस तरह से उसने व्यवहार किया ताकि ये साबित करे कि वह लोगों के बीच में था जिस मसीह की प्रतिज्ञा की गई, और इसी तरह से उसने खुद की पहचान दी और बाइबल के द्वारा प्रतिज्ञा की गई, वह अब उसी चीज को करेगा, या उसे उसी चीज को फिर से नहीं करना है? आप कहते हैं, क्या उसने बीमारों की चंगाई के विषय में कहा? जी हाँ, इब्रानियों बाइबल से जो मैंने अभी पढ़ा, यह कहता है कि अब यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसको हम अपनी दुर्बलताओं की भावनाओं में होकर छू सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि यह सत्य है? बाइबल ये कहती है, वह अब वही महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है। तब यदि वो वही महायाजक है जो वो तब था, वह अभी किस तरह से व्यवहार करेगा? उसे अब भी वैसा ही करना है जैसा उसने तब किया था। यदि वो वही महायाजक है, अब आप हो सकता है, मैं आपका महायाजक नहीं हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, और यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप अपने पति या अपने भाई या किसी को भी छूते हैं। लेकिन अब आपका विश्वास उसे छूने दो और देखो क्या होता है। अब यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैंने आपको सत्य बताया है, तो परमेश्वर ही इसको सत्य प्रमाणित करेगा, और इससे यह साबित हो जाएगा कि यीशु मसीह आज रात जीवित है और यहाँ खड़ा है। क्या यह सही है? अब आपके पास विश्वास है। एक समय में केवल एक तरफ के लोग, वहाँ उधर आपके पास विश्वास है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ माइक के पास ही रहूँ, क्योंकि वे मुझे नहीं सुन सकते। कोई तो बस परमेश्वर की ओर देखकर और कहे, परमेश्वर, यह मनुष्य मुझे नहीं जानता, यह मेरे विषय में कुछ नहीं जानता, मैं उसके लिए बिल्कुल अपरिचित हूँ, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास आपको छूने दो। और प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या मामला है, आप मेरे बारे में सब जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वैसे ही जैसे आप जानते थे कि पतरस कौन है, वैसे ही जैसे आप नतनेल को जानते थे, जैसे आप जानते थे कि उस स्त्री के साथ क्या गलत है जिसे लहू बहने का रोग था। और यह व्यक्ति मुझे बताता है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, तो प्रभु मेरा विश्वास आपको छू ले। और यदि वो ऐसा करता है, और यहाँ अपने आप को अचूक साबित करता है, तो आप में से कितने लोग पूरे हृदय से उसका विश्वास करेंगे? यदि वो गवाही के तौर पर कम से कम एक या दो या तीन लोगों पर ऐसा करे, एक गवाही के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब परमेश्वर पिता, यह पूरी तरह से मनुष्य की पहुंच से परे है, यह वो अलौकिक घटना होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप मेरी सहायता करें प्रभु, मैं आपके हाथों में हूं, जैसा आप उचित समझें वैसा ही मेरे साथ करें, यीशु के नाम में आमीन। अब परेशान ना हो, केवल नम्रता पूर्वक आदर पूर्वक कहें, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, और यह एक सत्य होगा कि यदि मैं आपके वस्त्र को छू सकता हूं, तब आप इस मनुष्य में से होकर बोलें। इस बात से मेरे लिए ये साबित हो जाएगा जो उसने कहा वो सत्य है। क्या यह ठीक है? आप में से कितने लोगों ने कभी उस प्रकाश के चित्र को देखा है? ये सारे देश भर में हर जगह है, इसकी जांच वैज्ञानिक रीति से हुई है, और हर कहीं पर अब वो ठीक यहाँ पर है। वही एक जिसने विवाह और तलाक के विषय में बोला, वही एक जो पहाड़ पर था जिसने वहाँ पीछे पहाड़ों को हिला दिया, वही एक जो सन 33 में यहाँ नदी पर था, वही जो कल आज और सर्वदा एक सा है, वो एक सा है। अब वहाँ एक स्त्री है, और अब यह पहचानती है कि कुछ तो हुआ है। वो प्रकाश ठीक उस स्त्री के ऊपर है। स्त्री जो ठीक यहाँ बैठी है, वह हरे रंग का स्वेटर पहने है, या कुछ ऐसा ही। मैं उस स्त्री को नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। यह सही बात है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, और आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी प्रकट कर देगा? और यदि वो करता है, तो आप यह जान जाएंगी कि यह एक अलौकिक सामर्थ्य है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, और फिर इसे अलौकिक में से होकर आना होगा। यह निर्भर करता है कि आप इसके विषय में क्या सोचती हैं। आप याजक के साथ अपना पक्ष ले सकती हैं, इसे शैतान कह सकती हैं, या फिर विश्वासियों के पक्ष में होकर और इसे परमेश्वर कह सकती हैं, जिस पर भी आप विश्वास करती हैं। यही है जहाँ से आपका प्रतिफल आएगा। यदि परमेश्वर मुझ पर आपकी परेशानी प्रकट करेगा, तो आप उसे अपनी परेशानी के लिए अपने प्रायश्चितता के रूप में ग्रहण करेंगी। मैं नहीं जानता कि क्या परेशानी है, लेकिन मुझे पता है और आप जानती हैं कि कुछ तो हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और तब आप जान जाएंगी आप वास्तविक ताजगी, मिठास, आरामदायक अनुभव कर रही हैं। मैं सीधा उसकी ओर देख रहा हूँ, यह वही प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश जो उस स्त्री के ऊपर मंडरा रहा है, और स्त्री अपने पेट में परेशानी से पीड़ित है। यह एक प्रकार की गांठ है जैसे जो उसके पेट में है। स्त्री यहाँ की नहीं है। नहीं, आप यहाँ कहीं दूर बाहर से हैं। क्या आप नहीं हैं? यह सही है। आप विस्कॉसिन से हैं, क्या यह सही है? निश्चय ही अब आप चंगी हो गई हैं। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। अब मुझे बताएं कि महिला ने किसको छुआ। मैं उससे 25 गज दूर खड़ा हूँ। उसने उस महायाजक यीशु मसीह को छुआ। क्या ये विश्वास करते हैं? मैं एक स्त्री की ओर देख रहा हूँ जिससे मैंने बात की है। यह स्त्री, मैं ठीक उसकी ओर देख रहा हूँ क्योंकि वह पूरे दृढ़ता से एक पुरुष के लिए प्रार्थना कर रही है। स्त्री ने मुझे बताया कि उसका एक पुरुष, उसने मुझे कभी कुछ भी इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उसका नाम श्रीमती वॉल्ड्रॉप है। वह फिनिक्स से आई है। वह मरे हुओं में से जी उठी थी, और उसके डॉक्टर ने एक्सरे में देखकर और उसके हृदय पर कैंसर बताया। वह प्रार्थना पंक्ति में मर गई थी। श्रीमती वॉल्ड्रॉप, यह कितने समय पहले की बात है? 18 वर्ष पहले, और आज रात यह जीवित गवाही यहाँ पर बैठी हुई है। उसका डॉक्टर सभा में आया, कहा कि स्त्री भला कैसे जीवित रह सकती है, लेकिन वह तो वहाँ पर है और उस रोग का कोई चिन्ह तक नहीं है। यह किसी को तो लेकर आई है, और वह उसके लिए प्रार्थना कर रही है। अब वह मधुमेह रोग से मर रहा है। अब जो मैं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि आप प्रार्थना कर रही हैं, आप जानती हैं कि मैं नहीं जानता वो कौन है। श्रीमती वॉल्ड्रॉप, वो व्यक्ति मिसौरी से है, और उसका नाम श्रीमान कूपर है। यह सही है। अब आप विश्वास करते हैं, आप चंगे होकर घर वापस जा सकते हैं श्रीमान। ये आपके ऊपर है, यदि आप इसका विश्वास करेंगे। यहाँ एक महिला है और वो दमे की बीमारी से पीड़ित है, जटिलताएं। वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो वहाँ बाहर भीड़ में बैठी हुई है, ठीक वहाँ बाहर की ओर। मैं आशा करता हूँ कि वह यहाँ की रहने वाली है, वो जॉर्जिया से है। कुमारी मैककेनी, आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं और विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आप मुझसे अपरिचित हैं, तो आप खड़ी हो जाएं, और ये सत्य है, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप विश्वास करती हैं? मेरी पीठ की ओर मेरे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो परमेश्वर से संपर्क कर रहा है, और वह जो चीज को चाह रहा है उसका एक बालक है जिसको हृदय का रोग है, और उस बालक के हृदय में घबराहट होती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, और उस व्यक्ति का नाम श्रीमान कॉक्स है। श्रीमान कॉक्स, आप खड़े हो जाएं। और उसने सारा को बताया कि वह पीछे बैठी क्या सोच रही थी। ठीक उससे गलियारे के उस पार थोड़ा सा और आगे एक व्यक्ति है जो यहाँ से नहीं है लेकिन न्यू मेक्सिको से आता है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं ठीक अब उसकी ओर देख रहा हूँ और वह मेरे पीछे है। वह न्यू मेक्सिको से है और उस व्यक्ति की एक लड़की है जिससे उसकी रुचि है, और लड़की के मुंह में कुछ तो खराबी है। यह एक उसके मुंह के तालू में कुछ तो गलत है, और इस व्यक्ति का नाम श्रीमान वेस्ट है। श्रीमान, क्या आप खड़े होंगे? मैं इस व्यक्ति से पूरी तरह से अपरिचित हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर उसके बच्चे को चंगा करेगा। क्या आप अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब आप में से कितने लोग पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? अब क्या यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एकता नहीं है? क्या आप उसे अब अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं। क्या आप उस पर अपने चंगाई देने वाले के रूप में विश्वास करते हैं? यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अपाहिज या ऐसा ही कुछ तो, चारपाई पर पड़ा हुआ है। क्या आप मेरी आवाज माइक में से सुन सकते हैं? मैं आपको नहीं जानता, आप बस एक स्त्री हैं जो चारपाई पर लेटी हुई है। यदि मैं आपको चंगा कर सकता तो मैं ऐसा करता। मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। तो ठीक है, यह बस एक पुरुष है जो आनंद कर रहा है, उसका बालक चंगा हो गया है। मैं आपको नहीं जानता, आप एक महिला हैं और मैं एक पुरुष हूँ। यह जीवन में पहली बार है कि हमने भेंट की है। मुझे लगता है ये लोग जिन्होंने आपको लाया है, स्पष्ट रूप से यह आपका यहाँ पहली बार है, अभी आपको लाया गया है। आप बहुत दूर से आई हैं, आप मृत्यु के साए में हैं, आपको कैंसर है, आप अपंग नहीं हैं, ये एक कैंसर है। डॉक्टर अब आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते, ये सच है, और आपका मरना निश्चित है। वे डॉक्टर आपके लिए अब और अधिक कुछ नहीं कर सकते। एक बार वहाँ सामरिया के फाटक पर तीन कोड़ी बैठे हुए थे, और उन कोड़ियों ने कहा, हम यहाँ बैठकर मृत्यु तक प्रतीक्षा क्यों करें? सारी बीमारी के कारण भूख से मर रहे हैं और एक दूसरे के बच्चों को खा रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि हम शत्रु की छावनी में जाएं, जो कि सीरिया के लोग हैं, यदि वे हमें मार भी डालें, कुछ भी हो, हमें तो मरना ही है, और यदि वे हमें बचा लेंगे तो हम जीवित रहेंगे। और उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया, और उस विश्वास के द्वारा उन्होंने केवल अपने को ही नहीं बचाया लेकिन सारे झुंड को बचाया। अब आप मर रही हैं यदि आप वहाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन आपको शत्रु की छावनी में जाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन आपको पिता के घर में आमंत्रित किया गया है। आप कैंसर से मर रही हैं, आप परमेश्वर से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकती। आप इस शहर से नहीं हैं, आप यहाँ आसपास से भी नहीं हैं, आप बहुत दूर से आई हैं, आप मिलवॉकी से आई हैं। यह सत्य है, यह सही है, मैंने शहर को देखा है, मैं इसे जानता हूँ, यह सही है। क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप परमेश्वर को इसी समय अपना चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करेंगी? यदि आप चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कमजोर हैं, आप कितना भी बिस्तर पर पड़ी रहें, मैं विश्वास करता हूँ आपके मामले में। मैं यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी खाट उठाकर और घर जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। मुझे परमेश्वर के भविष्यता के रूप में, क्या मेरी आज्ञा को मानेंगी? तब उठकर और जाएं, स्वस्थ रहें। डरो मत, अपनी खाट से उठें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। देखा, कोई तो उसे पकड़े जिससे कि वह उठ सके और शक्ति को पा सके। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करती हैं? उसे जरा शक्ति मिलने दो, वह ठीक हो जाएगी। ऐसा ही है बहन, वहाँ है वो। प्रभु यीशु के नाम में आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दें। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। जाएं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। स्वस्थ रहें।